वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हम लोग आवृत्ति करेंगे श्लोक 21 के कथा तो प्रथम श्लोक से चालू करेंगे 21st अहम् समाधाय मनोजथा समकर या और ऊंचा करो भाई एकदम मंद बोल रहा है हमको भी सर्दी है इसको समकर्षणस्त चरणारविन्दे त्वद्वज्रगङ्गो नुलितग्राम्य पाशो गतिं मुनेर्जां न पविद्धलोकः अहं समाधाय मनोजथाः संकर्षणस्त चरणारविन्दे त्वद्वज्ररङ्गो लुलितग्राम्य पाशो गति मुनिर्जाम अपविद्ध लोकः तैवं संसतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः नैव गृह्णन् भयत्रस्ता पलायन् परानृप कल यह कथा चल रही थी अंत में कि वृत्रासुर अपने सैनिकों को और विशेष करके सेनापतियों को बुला रहे थे युद्ध में लड़ने के लिए और उन्होंने बताया कि दो प्रकार की मृत्यु बहुत दुर्लभ है एक तो भगवान में अपने मन को रखकर भक्ति योग में रत रह करके शरीर छोड़ना और दूसरा युद्ध भूमि में पीठ न दिखाकर शत्रु के शस्त्र का आघात सह करके मर जाना तो यह मृत्यु सुलभ है आप लोग लौटिए लौटिए यहां मरने से आगे बहुत सुंदर लोक मिलेगा और इसके साथ ही इस संसार में जस रहेगा परंतु जितने भी सेनापति थे और उनकी सेनाएं किसी ने भी वृत्रासुर की बात को ग्रहण नहीं किया वृत्रासुर बहुत सुंदर उपदेश कर रहे थे तयवं संसतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः वृत्रासुर उनके पति थे पालक थे रक्षक थे उनके लिए कहा गया है धर्मम संसतः धर्म की बात कह रहे थे एक विशेष देश में और विशेष काल में मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है इसको बता रहे थे जब बहुत सुंदर युद्ध प्राप्त हो तो उस युद्ध में लड़ना चाहिए चाहे मरण हो अथवा विजय प्राप्त हो फिर माइक कम बोलना अरे ये भी तो किनारे युद्ध के मैदान में वृत्रासुर धर्म का उपदेश कर रहे थे बहुत सुंदर बात कह रहे थे परंतु उनके सैनिक भयत्रस्ता मरने के भय से बिल्कुल व्याकुल हो गए थे वे यही हम जीना चाहते थे उन्हें धर्म कर्म अच्छा नहीं लग रहा था क्या धर्म है क्या कर्म है धर्म का आचरण इसलिए किया जाता है कि इस जीवन में भी व्यक्ति को यश मिले और आगे उसकी सदगति हो, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो क्षणिक है। आगे यदि अच्छी गति हो रही हो तो इस समय कष्ट सह लेना चाहिए। तो धर्म की बात कह रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति के हित की बात कह रहे थे वृत्रासुर, लेकिन वे असुर लोग इसी जीवन में जीने के लिए इतना मुतावला थे कि सोच रहे थे कि बाप रे बाप, मर करके हम स्वर्ग में चले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा का कौन होगा। तो हम मरना नहीं चाहते, कुछ भी धर्म की बात हो, चाहे मरने से वैकुंठ भी मिले लेकिन हमको वैकुंठ नहीं जाना, या स्वर्ग मिले हमको उससे कोई मतलब नहीं। जैसे आजकल के लोग है बिल्कुल ग्रॉस इग्नोरेंस में रहते हैं, केवल इसी शरीर को सत्य समझ रहे हैं और इसके बाद भी हमारा जीवन है और इसके पहले भी था, इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। आज सुख मिलना चाहिए बस इसी के लिए व्याकुल रहते। तो न एव अग्रहणम, नैवा अग्रहणम, नहीं ही स्वीकार किए। वृत्रासुर जी निहोरा कर रहे थे कि लौटो लौटो लौटो, यहां मरना भी जीने की अपेक्षा कोटि गुना अच्छा है। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, कीर्ति रहेगी संसार में, सब जगह की वीर था, लड़ करके मर गया, परंतु न एव अग्रहण, नहीं ही स्वीकार किए, बल्कि पलायन परा, वो भागने को ही, पलायन को ही अपनी शरण मान रहे थे। यही ठीक है, इसमें भाग जाना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जान बचे तो लाखों पाए, अब जाने दो, भाग रहे, भागते हुए को प्रवचन सुना रहे हो, क्या सुनेंगे, नहीं सुनो। वो भी कहते हैं कि आओ यहां मरो, ये कौन ग्रहण करेगा, वो लोग ग्रहण नहीं किए। न एवं अग्रहण पलायन पर आने पर, हे महाराज परीक्षित, आपको भी अनुभव है कि किस तरह आपने युद्ध किया और उस युद्ध में कई लोग भागे हैं और लौटे नहीं। नृप शब्द द्वारा सुखदेव गोस्वामी मालूम को याद दिला रहे हैं कि आपने देखा ही होगा युद्ध, यह सुना होगा कि युद्ध में जो जीना चाहता है, जिसे भय हो जाता है, तो वो भागता ही है, भागना ही एकमात्र वो रक्षा मानता है। तो भागते गए, धर्म की बात ग्रहण नहीं किए। दो कारण से ग्रहण नहीं किए, तो अचेत सह और दूसरा पलायन परा। अचेत सह का अर्थ है वो इतना अपने बच्चों के लिए, स्त्री के लिए और अपने जीने की उनको लालसा थी कि ध्यान दिए ही नहीं, उनका चित्त दूसरे तरफ था। वृत्रासुर जी क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान दिए ही नहीं। ऐसा होता कि रुख करके और सुनते कि हाँ हाँ ठीक है, सुनो सुनो क्या बोल रहे हैं, नहीं वो सुने ही नहीं, पलायन पर केवल भागते रहे भागते रहे भागते रहे। तो जब ये सब लोग भाग गए, दूर जाकर के देखने लगे, इसका अर्थ ये है तो भाग रहे थे तो देवता लोग पीछे से उनको खदेड़ करके मारना चालू किए। अब तक देवता लोग कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किए थे, परंतु दैत्यों के सारे आयुध और पर्वत वृक्ष आदि सब समाप्त हो गए तो भागने लगे। तब देवता लोग पीछे से प्रहार करना चालू किए, वे लोग पीछा किए, वे लोग तो अधर्म कर ही रहे थे, देवता भी अधर्म पर तुल गए। शास्त्र का यह नियम है कि जो भयभीत हो गया हो, डर गया हो, उसे शत्रु को नहीं मारना चाहिए। भगवान ने भागवत में 10 प्रकार के शत्रुओं का वर्णन किया है, उनका वध नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्म। भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, अश्वत्थामा सोए हुए बच्चों की हत्या किया था, अतः इसकी हत्या कर देने में कोई पाप नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि आखिर ये अपने शत्रु के बच्चों की हत्या किया, हाँ लेकिन ये धर्मशास्त्र कहता है कि नहीं वध करना चाहिए। उसे भगवान बता रहे हैं मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम। मत्तम का अर्थ है जो व्यक्ति शराब पी लिया हो, मत्त हो गए, मतवाला हो गया, सावधान नहीं है, शत्रु है लेकिन शराब आदि पी लिया है, तो उसको वध नहीं करना चाहिए। प्रमत्तम और कोई प्रमत्त है, प्रमत्त का अर्थ है असावधान, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तैयार नहीं है तो उस समय उस पर आघात करना यह पाप है। और उन्मत्तम, कोई पागल हो गया है, भूत लग गया है उसको या ग्रह लग गया है, तो उस शत्रु का वध नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम, यदि कोई शत्रु है सोया हुआ है तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। बालम, भले अपने शत्रु का पुत्र है, डायरेक्ट शत्रु है लेकिन बच्चा है तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। स्त्रियम, स्त्री है भले शत्रु का काम कर रही लेकिन उसको नहीं मारना चाहिए। स्त्रियम जडम, और कोई व्यक्ति बिल्कुल जड है, ध्यान नहीं है युद्ध कला आदि का, शरीर का मूर्ख है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। और प्रपन्नम वीरथम भीतम, जो शरण में आ गया हो, ये कहे कि मैं आपकी शरण में हूं और भयभीत हो गया हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए। जिसका रथ, जिसकी सवारी टूट गई हो उसका वध नहीं करना चाहिए, धर्मशास्त्र कहता है। लेकिन देवता लोग भयभीत असुरों को मारने के लिए चले। तो वृत्रासुर जी ने देखा विसीर्जमानं प्रतिनाम आसुरिं असुरर्षभः, असुरों में श्रेष्ठ वृत्रासुर जी ने देखा कि आसुरी सेना विसीर्जमाना, सब बिखर गई, तितर बितर हो गए, छिन्न भिन्न हो गए युद्ध के मैदान से। और कालानुकूले त्रिदशै काल्यमानं अनाथवत्, उन्होंने देखा कि देवताओं के अनुकूल है इस समय काल, समय जो चल रहा है वो देवताओं के अनुकूल चल रहा है। कालानुकूले त्रिदशै, देवताओं को त्रिदश कहते हैं, 33 करोड़ उनकी जातियां हैं देवताओं की, और एक एक जाति में तो न जाने कितने हैं, तो 33 को ऐसे जनरली 30-30 कहते हैं, तो त्रिदश का अर्थ है 3 दहाई 30, त्रिदशै काल्यमान, त्रिदशै मतलब जो 33 करोड़ है जाति में, तो संस्कृत में 33 न कह करके 30 कहते हैं, क्योंकि 33 के निकट है कहने में थोड़ा आसान है, इसलिए त्रिदश त्रिदश, त्रिदश का अर्थ देवता। तो त्रिदश लोग, इसके द्वारा सुखदेव को संदेह कर रहे हैं कि देवता सब जुट गए थे बहुत भारी संख्या में और वे असुरों को मारना चालू किए पीछे से, काल्य माना विद्राव माना, और वास्तव में मार कह रहे थे, उनके द्वारा सेना बिल्कुल भाग खड़ी हुई और पीछा कर रहे थे। दृष्ट्वा अतप्यत संक्रुद्ध, इस दृश्य को देखकर इनको बहुत शोक हुआ वृत्रासुर को। कल मैं कहा था कि ये आसुर भाव से युक्त हैं, इसीलिए असुरों की दुर्दशा को देख करके इन्हें दुख हुआ। आसुर भाव अभी भी रह रहा, भोजपुरी में कहते हैं कोई व्यक्ति अगर इस तरह के आगंतुक भाव में डूब जाए तो कहते हैं गोताई हुआ, गोता गया, ऐसे कहते भूत लग गया है, गोता गया, बहुत प्रसिद्ध शब्द है। तो रह रह करके वे आसुर भाव में बिल्कुल मग्न हो जाते थे, तो असुरों की दुर्दशा को देख करके उन्हें बहुत दुख हुआ कि हाय हाय हमारी सेना इस तरह से तितर बितर हो गई, और संक्रुद्ध क्रोध हो गया। इंद्र शत्रु अमरषित, और चूंकि वे इंद्र के शत्रु थे, उनका जन्म ही इसीलिए दिया गया था, इंद्र के प्रति शत्रु भाव भरा हुआ था, इनके पिता इसीलिए यज्ञ कराए थे, उनमें इंद्र के प्रति द्रोह की भावना थी त्वष्टा के मन में, और त्वष्टा जो यज्ञ कराए थे, जिस यज्ञाग्नि में वृत्रासुर प्रकट हुए, तो उसका एक एक सामान, एक एक मंत्र, सब कुछ इंद्र के द्रोह से भरा हुआ था। इस कारण से वृत्रासुर जो जन्म लिए, ये मूर्तिमान इंद्र के शत्रु के रूप में जन्म लिए, यद्यपि उनका स्वरूप नहीं था, स्वरूप से एक महान भक्त थे, परंतु जन्म में जो बाहरी परिस्थिति होती है वह भी बहुत बड़ा कारण हो जाती है। अतः कोई व्यक्ति चाहता है कि हमको पुत्र हो, तो शुरू से ही यही सोचना चाहिए कि यह भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बने, तो माता पिता के संकल्प का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और ऐसा नहीं, कुछ लोग तो सोचते हैं कि यानी हम पुत्र होना चाहिए पहले, यह कुल का दीपक, घर का दीपक होना चाहिए, नहीं तो एक खानदान ही डूबने वाला है। थोड़ा और हाई कीजिए, हाई। संकल्प का बहुत बड़ा असर होता है। इंद्र शत्रु शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका अर्थ है कि यह तो जन्मा ही था इंद्र की शत्रुता के प्रति, और जब देवताओं ने असुरों की सेना को तितर बितर कर दिया तब वृत्रासुर और अधिक क्रोधित हो गए और इंद्र के प्रति इनका द्रोह और बढ़ गया। इंद्र शत्रु रमर्षित अमर्षित, वे सह नहीं सके देवताओं के इस विजय को। अमर्षित, अमर्ष का अर्थ होता है असहनशीलता, अमर्षित सह नहीं सके। अतः देवताओं के सामने आकर के, जो देवता बहुत बड़ी लंबी कतार में जो असुरों का पीछा कर रहे थे, अपने बाहों को फैला करके वृत्रासुर बीच में आकर खड़ा हो गए। उन्होंने कहा तिष्ठ, रुको, बहुत जोर से निवार्य ओज सा, बहुत ओज से फूर्ति से आकर के और रोके रोके और भर्सना करने लगे, बहुत प्रकार से बुरा वचन बोलने लग देवताओं। और उन्होंने कहा किम व उच्चंतर मातु धावर भी पृष्ठ तो हतई नहीं भीत मधर्स लाभ्यो न स्वर्ग सुर मानिना, तुम लोग ऐसे लोगों का वध करना चाहते हो जो लोग इस युद्ध में पीठ दिखा करके भाग रहे हैं। जो व्यक्ति युद्ध में पीठ दिखा दे, मुख मोड़ करके भाग जाए, उसको कहा जाता है कि वह अपने पिता का, अपने माँ का वास्तव में वास्तविक लाल नहीं है, वह उसका मलमूत्र जैसा है, ऐसा कहा जाता है। उच्चरित, उच्चरित का अर्थ होता है पुरुष मल। तो ये तो जो युद्ध छोड़ करके भाग रहे हैं, ये तो अपने माँ के मल है ही, और तुम लोग कौन बड़ा काम कर रहे हो, तुम लोग भी वैसे ही हो, ऐसे कह रहे हैं। तुम लोग ऐसे भयभीत लोगों को मार करके क्या पाओगे, इनसे तुमको मारने से क्या मिलेगा। मातु उच्चरित ही धावत भी पृष्ठ तो हत, तीन विशेषण दे रहे हैं। जो लोग युद्ध छोड़ करके भाग गए उनके विषय में वृत्रासुर जी कहते हैं कि माता के उच्चरित हैं और भाग रहे हैं और पीठ पर मारा जा रहा है, पीछे से तुम लोग प्रहार कर रहे हो, तो किम, ऐसा करने से तुम लोगों को क्या लाभ होगा, क्या पाओगे उनको मार करके, जो भाग ही रहे हैं ऑलरेडी, सब उनको मारने से क्या फायदा। नहीं भीत बधा असला, देखो कुछ भी नहीं मिलेगा उनको मारने से, न तो कीर्ति मिलेगी और न तो धर्म मिलेगा, जश नहीं मिलेगा भयभीत लोगों को मारने से। नहीं भीत बध श्लाघ्य, श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा, कीर्ति, जो डर गया है युद्ध में उसका वध करना प्रशंसा की बात नहीं होती है, और न तो स्वर्ग मिलता है, तो धर्म इस तरह से बिगड़ जाता है, अर्थात लोक और जश दोनों चला जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हो, और हाथ फैला करके कई किलोमीटर में रोक दिया उन्होंने देवताओं को। शरीर बहुत बड़ा था और हाथ में सूल लिए, यदि देवताओं को ये मारना नहीं चाहते थे, मन में हृदय में ही चाहते कि मारूंगा नहीं, रह रह करके वैष्णव भाव भी उनका आ रहा था, लेकिन ज्यादा अभी आंसू भाव था तो रोक दिए, भर्सना किए, और इसके बाद तिरस्कार करते हुए कहते हैं यदि वह प्रधने श्रद्धा सारंबा छुन्न का हृदय अग्रे तृष्ठत मात्र में नचत ग्राम्य सुख स्प्रेह, यदि युद्ध को तुम लोग बहुत अच्छी चीज समझते हो, यदि युद्ध में तुम्हारी श्रद्धा है और यदि ग्राम्य सुख में तुम्हारी स्प्रेह नहीं है और हृदय में यदि धैर्य है, तो बस मेरे सामने तुम लोग ठहर जाओ, मैं अभी बता देता हूं। इतना कर तीन बात कह रहे हैं। यदि वह प्रधने श्रद्धा, वह का अर्थ जुष्माकम, यदि जुष्माकम प्रधने श्रद्धा तिष्ठति, यदि युद्ध में तुम्हारी श्रद्धा है, इसका अर्थ है कि यदि युद्ध को तुम लोग बहुत अच्छी चीज मानते हो तो बस मेरे सामने रुक जाओ। दूसरी बात कहते हैं, यदि तुम लोगों के हृदय में धैर्य है तो मेरे सामने रुक जाओ, और यदि ग्राम में सुख में स्प्रिया नहीं है तो रुक जाओ। ग्राम में सुख में स्प्रिया नहीं है, इसका मतलब कि अपनी स्त्री से भेंट करने की इच्छा नहीं हो, परिवार में सुख नहीं दिखाई पड़ रहा है, तब रुक जाओ मेरे सामने। और नहीं, यदि अपनी बीवी से अभी भेंट करना है तो जाओ, भाग जाओ, नहीं मारूंगा, जाओ जाओ जाओ, जाओ। इस तरह से उपहास करने लगे। यदि अभी घर गृहस्थी अच्छी लग रही है, जीने की लालसा है, तो जाओ जाओ, हट जाओ, मैं नहीं मारूंगा। लेकिन अब घर गृहस्थी से मन भर गया, अर्थात मरने की अगर इच्छा है तो मेरे सामने खड़ा रह जाओ। उनके कहने का आशय है, साहित्य में बोल रहे हैं, यदि वह प्रधने श्रद्धा, युद्ध को प्रधन कहता है, युद्ध में बहुत धन प्राप्त होता है, सोने चांदी के सब आयुध रहते हैं, श्रृंगार रहता है, तो कोई वीर मरते हैं तो एक वीर मरता है तो उसके शरीर पर कोटि कोटि रुपए का गहना रहता है। तो युद्ध में बहुत से सैनिक मरते हैं, रथ टूटता है, हाथी मरते हैं, तो बाद में उस धन को जो राजा जीतता है वो इकट्ठा करवा लेता है। इसलिए युद्ध का एक नाम है प्रधन, प्रकृष्ट धन जहां प्राप्त होता है, इसमें प्रधन शब्द किया। तो युद्ध को यदि तुम लोग अच्छा समझते हो कि इसमें मरने से सदगति मिलती है, अगर यह विचार है और हृदय में धैर्य है और पुत्र परिवार स्त्री आदि से आप मिलने की कोई लालसा नहीं है, तो मेरे सामने ठहर जाओ, अभी बता देता हूं। अगर तीनों में एक भी नहीं है या एक नहीं है तो ठीक है, मैं अभी भी चांस देता हूं, लौट जाओ। यदि युद्ध को खराब समझते हो तो चलेगा, धैर्य नहीं है तो चलेगा, और अभी अपनी पत्नी से मिलना है तो चलेगा, छोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं। अजीब अजीब तिरस्कार कर रहे, ग्राम में सुख में स्प्रिया नहीं है तो ठहर जाओ। इतना कह करके देवताओं को भयभीत करने लगे अपने विशाल शरीर से दिखा करके। वास्तव में विभीषिका पैदा करना ही इनका उद्देश्य था, किसी देवता को ये मारना चाहते नहीं थे हृदय से। धृतराष्ट्र की यह महानता थी तो रोक दिए, सारे देवता स्तंभित हो गए, कांपने लगे डर से इनको देख करके। एवं सुर गणान क्रुद्धो भीषयन बपुसा विपुल, अपने शत्रु देवताओं को डराने लगे, सब भयभीत हो गए, और जब डर रहे थे इनको देख करके, उसी समय वृत्रासुर एक बहुत बड़ा चिघार किया, व्यंग नदत सु महाप्राण जेन लोका विचेत सर, बहुत उच्च स्वर से ये वज्रपात की तरह आवाज किए। बहुत बड़ा शरीर था, बहुत बड़ा, इसलिए उन्होंने ऐसे जोर से कहा कि जितने लोग थे बहुत दूर में सब मूर्छित हो गए सुनकर, और देवताओं में सभी देवताएं केवल इंद्र को छोड़ करके, और सब ऐसे गिर पड़े अपने अपने वाहनों से, लगा कि उनके ऊपर वज्रपात हो गया, ऐसे सब ऐसे आंख बंद करके पकड़ करके सब ढाय ढाय नीचे गिर गए, मूर्छित होकर गिर गए। अब मान लीजिए जो हाथी पर है और हाथी पर मूर्छित हुआ तो गिरेगा ही नीचे, घोड़ा पर था वो गिर गया, केवल दहाड़ करने से गिर गए। संसार में कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी आवाज हुई है, जैसा भागवत में वर्णन किया गया है, जब भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रकट होने के पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी आवाज उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा जी के लोक में आवाज पहुंची तो ब्रह्मा जी उस ध्वनि के मूल पर विचार करने लगे क्या हुआ। वे वहां अपने पुत्रों से मरीचि आदि से बात करने लगे कि लगता है कि प्रलय का समय आ गया, ये असमय में प्रलय होगा क्या, क्योंकि प्रलय में ऐसी आवाज होती है, सब समय नहीं, तो प्रलय होने वाला है क्या। तो जिधर से आवाज आ रही थी उधर दौड़े दौड़े गए विमान से, तुरंत जाकर देखते हैं कि भगवान प्रकट हुए। भगवान नृसिंह देव के अवतार की सूचना कि इस दिन अवतार होगा पहले से नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण का डेट तक निश्चित था कि इस दिन अवतार लेंगे और यहां पर, लेकिन नृसिंह भगवान तो अकस्मात प्रकट हुए। कहे थे कि मैं प्रहलाद को बचा लूंगा, हिरण्यकश्यप को मार दूंगा, लेकिन कब कहां कैसे ये नहीं बताए। ये नहीं कहे थे कि मैं नृसिंह बन करके आऊंगा उसको मार दूंगा। इसलिए देवताओं को इसका पता नहीं था, ब्रह्मा जी तक को पता नहीं था। तो लोग आवाज सुन सुन करके सब आए, बिना फोन किए बिना निमंत्रण के सब आ गए। और यहां आए तो भगवान के पास जाने की किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी। इतना विकराल रूप भगवान का कभी वो सोचे भी नहीं थे। हर एक बार भगवान आते थे तो उन पर फूल बरसाते थे, स्वागत करते थे देवता, स्तुति करते थे। और इस बार जब भगवान प्रकट हुए तो उनको देख देख करके और पीछे हटने लगे। भगवान का मूड ठीक नहीं है। और ब्रह्मा जी पर देख रहे तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सरकार मैं ब्रह्मा हूं, आपका सेवक हूं, हमको ये बहुत तंग किया है कस्पु, बहुत अच्छा किया इसने, आप इसको आपने मार दिया, हमसे वर प्राप्त करके या इतना उदंड हो गया था। भगवान बैठे तो देख रहे थे, जो किन्नरों पर देखते हैं तो कहते हैं सरकार हम किन्नर हैं, हम आपका जस गाते हैं, लेकिन यह हमें अपनी पालकी में लगाया था। तो इंद्र पर देखे तो इंद्र प्रणाम कर रहे हैं दूर दूर से, जिस पर देखते हैं वही झुक जाता है प्रणाम कर। ये आठवें अध्याय में सातवें स्कंध के आठवें अध्याय में सब स्तुति दी गई। तो इस तरह से जैसे भगवान नृसिंह देव ने आवाज किया था, तो आवाज का जहां तक वर्णन है, कब कब बहुत भारी भारी आवाज हुआ है प्रलय काल के अलावा, तो उसमें वृत्र विस्फोट भी एक है, उसका नाम ही है वृत्र विस्फोट। विस्फोट में इस समय भी संसार में सबसे ज्यादा आवाज विस्फोट में होता है। यहां शब्द दिया गया है वृत्र विस्फोट नेन, वृत्र ने ऐसा विस्फोट किया, तो केवल मुख से आवाज किया। हरेक टीकाकार कहते हैं कि वो उसने मुख से आवाज किया और ताली बजा दिया, यही बहुत भारी विस्फोट हुआ। व्यन नदत सु महाप्राणो जेल लोका विचेत तेन देव गणा सर्वे वृत्र विस्फोट ने वही निपेतु मूर्छिता भूमो जथैवा समिना हता। सब भूमो निपेत, भूमि पर गिर गए देवता, हालत बिगड़ गई देवताओं की, जितनों की धोती सोती सब खराब हो गई, इतना कड़ा ध्वनि हुआ। और ऐसा लगा प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे कि उनके ऊपर ही वज्रपात हो गया, केवल आवाज भर हुई, वास्तव में वज्रपात हुआ नहीं, लेकिन ऐसा सबको अनुभव हो रहा था कि हाँ गिर गए, एकदम मूर्छित हो गए, उसमें चेतना नहीं रह गई। चलो सुखदेव को समझ कहते मूर्छिता, और तेन देव गणा सर्वे, और सभी देवता मूर्छित हो गिर गए अपने अपने वाहनों से, क्या लड़ेंगे उसके साथ जिसके आवाज करने से सब मूर्छित होकर के गिर गए। देखिए क्षण भर में क्या दृश्य बदल रहा है, सेना सारी भाग चुकी है, देवता लोग विजय में थे, विजय के गर्भ में थे, पीछा कर रहे थे, दैत्यों का कुमार रहे थे, लेकिन क्षण भर में और वही लोग मरे जैसे गिर गए सभी लोग एक आवाज, इतने बलवान थे वृत्रासुर। जथा एवं असनिना था, असनी का थे वज्र, लगा कि उनके ऊपर बिजली गिर गई और सब जहां तहां पड़ गए। जब सब बेहोश होकर के पड़ गए देव सैनिक, तब वृत्रासुर जी उनके ऊपर अपने पैर से रौंदना चालू किए, मारे नहीं, उस समय चाहते तो खचखच त्रिशूल से सबको मारकर खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये महात्मा थे, अपने पैर से रौंदने लगे। देवता भी धन्य हो गए वृत्रासुर का चरण रज पा करके, रौंदने लगे सबके पैर, पैर देने लगे सब पर, लेकिन बहुत हिसाब से पैर दे रहे थे, तो वास्तव में अपना भार डाल देते तो हर खत्म ही हो जाते, देवता सब खत्म हो जाते। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पैर दे रहे, पूरा भार नहीं डाल रहे, तो भार डाल देते किसी के पेट पर तो पेट फट जाता है, सिर फट जाता है, कुछ भी हो जाता, इतना बड़ा वजन था। किसी के ऊपर पहाड़ लगा दीजिए तो क्या होगा, मतलब मैं सुना था दिल्ली में एक रैली निकली थी, तो रैली में रात के समय कुछ लोग डिवाइडर पर सो गए थे बीच में, सो गए थे, और एक ट्रक वाला पागल हो गया था, क्या शराब पी लिया था, और रात में आदमियों को रौंदता हुआ चला गया, 25-26 आदमी मर गए। तो किसी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया है तो कैसे जी सकता है, वृत्रासुर जिसके ऊपर चढ़ जाए वो जीने की तो हालत नहीं, लेकिन वो रौंद रहे थे ऐसे थोड़ा हल्का केवल मार रहे थे, और सब आंख बंद किए हुए आए बाप आए दादा, ये सब देवता लोग हाहाकार कर रहे थे, और कुछ तो मूर्छित पड़े थे, कुछ लोग हाय हाय कर रहे थे। क्षण भर में दृश्य बदल गया, असुरों की सेना भाग चली, देवताओं की जो विजयी सेना थी वो इस तरह रौंदी जा रही, और भगवान इंद्र हाथी पर ऐरावत पर सवार होकर के देख रहे थे दर्शन, हाय रे भगवान ये क्या हुआ है, भगवान कहे कि वज्र बनेगा इससे मारा जाएगा वृत्रासुर, अब यह क्या हो गया, तो बहुत चकित हो गया। तो ममर्द पद्भ्याम सुरसैन मातुरम निमिलिताक्षम रणरंग दुर्लभ, रणभूमि में युद्ध का उत्साह लिए हुए वृत्रासुर पद्भ्याम ममर्द अपने पैरों से सुरसैनिका ममर्द, देवताओं के सैनिकों को ममर्द मतलब मर्दित कर रहे थे, पैर से रौंद रहे थे। यह गाम कंपयन उद्यत सूल ओजसा, सूल को उठा लिए थे हाथ में, त्रिशूल था बहुत बड़ा, उसको ले करके खड़ा करके और पैरों से देवताओं को रौंद रहे थे, ऐसे जैसे युद्धपति गजराज नाल बंद को रौंदता है। नाल कहते हैं छोटा बांस, छोटा बांस होता है वो झुक जाता है, उस पर हमने देखा है बच्चे चढ़ते हैं रौंदते हैं, लेकिन इसके बाद खड़ा हो जाता है, वो टूटता नहीं है। बेंत का बन जो होता है पतला पतला बांस, तो उस पर झुक जाता है वो फिर खड़ा हो जाता है, टूटता नहीं। तो जैसे मतवाला गजराज नाल के बल को रौंदे, उस तरह से वृत्रासुर रौंद रहे थे। इसका अर्थ कि किसी को जान से नहीं मारे, जैसे वो बांस खड़े हो जाते हैं फिर इसी तरह से देवता लोग सब खड़े हो जाएंगे, उनके बाहन आदि भी सब ठीक रहे, वो मरेंगे नहीं, इसका भाव है। रौंद रहे और त्रिशूल को ऊपर उठाए, त्रिशूल से किसी को मार नहीं रहे थे, केवल पैरों से रौंद रहे। हमको तो ये दृश्य बहुत अच्छा लगता है, देवताओं को वृत्रासुर जी का चरण कमल का स्पर्श मिला, भले थोड़ा कठोर मिला लेकिन अच्छा हुआ एक महाभागवत के चरण का स्पर्श देवताओं को मिल रहा है, और सब डर करके गिरे थे कि अब तो खत्म ही हुए, जिसके आवाज से ऐसी दशा हो गई और पैर देगा तो कैसे जी सकते, अब तो मरना ही है। विलोक्यतम वज्रधरो त्यमर्षितः स्वशत्रवे भी द्रवते महागदान, चिक्षेप तामा पततिं सुदुःसहां, वाम जग्राह वामेन करेण लीलया। तो भगवान इंद्र ने देखा वृत्रासुर के इस विजय को, तो वे अति अमर्षित हो गए, वे सह नहीं सके, क्योंकि वज्र धरा, वे हाथ में वज्र लिए थे। अथवा इसका यह अर्थ है कि जब वृत्रासुर देवताओं को रौंदने लगे तब भगवान इंद्र ने वज्र को हाथ में लिया, अभी सावधान हो गए, सह नहीं सके, और देखे कि अब यह सबको रौंदता हुआ मेरे तरफ आ रहा है, अभी द्रवते स्वशत्र, यह मेरा शत्रु है, मेरा वध करने के लिए उत्पन्न किया गया है। भगवान इंद्र को सारी घटना याद आने लगी कि किस तरह मैंने विश्वरूप का वध किया और उसके बदले में मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए त्वष्टा ने इसको उत्पन्न किया है। भगवान इंद्र को ये बात सारी याद आने लगी, तो याद आ गया कि ये मेरा शत्रु है, मेरी जान मारने के लिए पैदा किया गया है, और उसकी सफलता देख करके लिए दंग हो गए वास्तव में, तो इसलिए सावधान हो गए, और वो आ रहा था बड़े वेग से इंद्र के तरफ, फिर सूल उठाए, तो भगवान इंद्र को लगा कि यह सूल से मेरा वध करेगा, सूल उठाए उठाए आ रहा था बहुत वेग से, अभिद्रवते, अभिद्रवते का अर्थ बहुत वेग से आ रहा था। तो आते हुए वृत्रासुर पर इंद्र देव ने अपनी गदा को घुमा करके मारा बहुत जोर से, महागदा। यहां से लक्ष्मदेव को सकते महागदन चिक्षेप का फेंका, मोशन बना करके इंद्रदेव ने तत्काल गदा को मारा। तो महागदा है, विफल होने वाली गदा नहीं थी। फेंका बहुत जोर से, जितना जोर से एक राइफल की गोली नहीं जा सकती है जितना तीव्र से, उससे कई गुना ज्यादा वेग से वो गदा जा रही थी वृत्रासुर के पास। लेकिन वृत्रासुर जी आती हुई गदा को खेल खेल में बाएं हाथ से पकड़ लिए। लीला जग्राह बाने न करे लीला, दुसहा उस गदा के वेग को सहना कठिन था, पकड़ने की बात तो दूर है, लेकिन उसको वृत्रासुर जी ने खेल खेल में पकड़ लिया, आसानी से पकड़ लिया, बहुत सावधानी से नहीं, जैसे लगता था कोई फतिंगा पकड़ लिया, पकड़ लिया। देखिए वृत्रासुर की वीरता, और गदा को पकड़ करके उसी गदा को थोड़ा सा ही घुमा करके और उन्होंने ऐरावत के मस्तक पर मारा जोर से, ऐरावत के मस्तक पर, जिस हाथी पर सवार थे भगवान इंद्र, उस हाथी के मस्तक पर मारे, इंद्र पर नहीं मारे। वृत्रासुर जानते थे कि ये भगवान के भक्त हैं, भगवान इनके पक्ष में है, इंद्र का वध वो नहीं करना चाहते थे, न कर सकते थे, केवल शक्ति से ही कोई काम नहीं होता, जानते थे भगवान इनके फेवर में है, ये मरेंगे नहीं, और ये मारना चाहते भी नहीं, इसलिए हाथी पर मारे। हाथी पर जो ही मारे तो इतना जोर का आघात हुआ हाथी के सिर पर कि उसका मुख खुल गया और ऐसे कह करके सात धनुष पीछे चला गया, मतलब 28 हाथ या 28 डेढ़ इतना फीट पीछे चला गया, इंद्र को लिए दिए चला गया, इतना जोर से गदा लगा। कितना फोर्स उस गदा में होगा कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला ऐरावत 28 हाथ पीछे चला गया, भिन्न मुख, उसका मुख बिल्कुल खुल गया, बहुत बड़ा मुख और चिंगारा मस्तक फट गया, उस पर छत हो गया। बाद में इंद्रदेव ने हाथी को ठीक कर दिया, घाव तो ठीक हो गया, लेकिन वृत्रासुर जी ने जो तिलक दिया है रावत पर वो आज तक बना हुआ है, वो छत नहीं भरा। तो ऐरावत की शोभा होती है, जो लोग देखते हैं तो कहते हैं होगा वृत्रासुर ने मारा था इसको मस्तक। हाथी इंद्र को लिए दिए जाकर के गिरा, ऐसे सूंड है दोनों दांत और मुख ऊपर हो गए, आह करके इंद्रदेव नीचे हो गए हाथी पर से, चले हैं विजय प्राप्त करने के लिए और वाहन की ये दशा हो गई। तो तुरंत ही भगवान इंद्र हाथी को सहलाने लगे अपने दाहिने हाथ से, भगवान इंद्र के हाथ से अमृत निकलता है, खास करके उनके तर्जनी से अमृत निकलता है, तुरंत ही उन्होंने उसको सहलाया। सहलाने से बीतक व्यथा, व्यथा चली गई हाथी, लेकिन छत रह गया, गदा लगने का जो निशान था थोड़ा धसा हुआ और चमड़ा छिल गया वो तो रह ही गया, लेकिन उसमें घाव अभी ताजा ताजा था, घाव था लेकिन दर्द नहीं रह गया। भगवान इंद्र देव के हाथों में शक्ति, बताइए देवराज इंद्र के हाथ में शक्ति है तो भगवान के हाथ में कितनी शक्ति होगी, जिसको छू दे उसको सहला लो कितना सुखी होता है। हाथी को इंद्र देवता ने सहलाया, पुचकारा, ठीक किया, हाथी ठीक हो गया, उत्साह फिर हो गया लड़ने का। पशु भी स्नेह चाहते हैं वास्तव में, देखा है किस तरह से हाथी को मनाया जाता है, हाथी मनाने पर भोजन करता है, हाथी का स्वभाव। और कुत्ता ठीक इसके विपरीत होता है, वो खिलाने वाले की चपलूसी करता है, कुछ डुलाना है करना, वो जानता है फिर भी ये भोजन मिलेगा लेकिन फिर भी खिलाने वाले की चपलूसी करता है। और हाथी की चपलूसी करनी पड़ती है खाने के लिए, तो मनाया जाता है। तो पशु पक्षी भी स्नेह चाहते हैं। इंद्रदेव जब इस तरह से स्नेह किए, अपने हाथ से स्पर्श किए, सब किए, तो हाथी ठीक हो गया। ऐसे हमने देखा है केवल दवा का ही असर नहीं होता है, हाथों का स्पर्श भी विशेष व्यक्ति का बहुत दर्द को दूर कर देता है। मैं देखा था एक बार, अपने गांव की बात है, तो भागवत में सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बार एक व्यक्ति बीमार था, बीमार नहीं था, बीमार का नकल किया था कि क्या किया था, तो सब लोग आ रहे थे, तब तक वो बीमारी काछे रहा। लोग कहते थे ले जाना है बाजार, डॉक्टर के पास ले जाना है, ले जाना है, ले जाना। वो ऐसी बात थी, उसकी पत्नी का दिल रख दिया गया था नैहर जाने का, अपने माता पिता के यहां जाने वाली थी, ठीक मंदिर के पास की घटना है, वो जाने वाली थी अपने माता पिता के यहां। तो इस घटना, इस संवाद को सुनकर के ही वो बीमार हो गया था और वो घर से चली गई थी कुछ दिन। तब तक कुछ लोगों ने जा करके कहा कि तुम्हारे पति तो बिल्कुल बीमार हो गए हैं, लगता है कि अब नहीं बचेंगे, इतनी हालत खराब हो गई। तो बेचारी आई और आया, आ करके उसने देखा, देख करके उनके शरीर का स्पर्श किया, तो उसके बाद वो कहते हैं अब मेरी बीमारी चली गई। उनको रास्ते से घर लौटा लिए, डॉक्टर के पास नहीं ले गए। कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हो, अपना व्यक्ति, और उसके पास आप जाइए, केवल उसके हाथ को छू दीजिए, बुखार है, केवल छूने से वो ठीक हो जाएगा, ऐसा देखा गया है, उसके सिर पर हाथ रखिए तो ठीक हो जाता है। और आप ऐसे दवाई दीजिए उसको, छूए ना, न स्नेह से बोलिए तो ठीक नहीं। इंद्र देवता का वो अपना हाथी है, तो उसको बहुत, जिसको पेट एनिमल कहते हैं, बहुत स्नेह से रखते थे। उनके हाथों का स्पर्श पाकर के हाथी ठीक हो गया। और अमृतस्यम भी यहां लिखा गया, वृत्रासुर के लिए उग्र विक्रमह शब्द का प्रयोग किया गया। वृत्रासुर में बहुत बड़ा बल था और युद्ध में जब वे मारे गजेंद्र को, कुबले अपीड ऐरावत को, तो बहुत जोर से आवाज करके मारे, गदा घुमा करके, उससे कुंभस्थल फट गया। जघान कुंभस्थल उल्लगन तत्कर्म सर्वे समपूजन पर, जिस समय हाथी पर इंद्र की गदा को ही लेकर के वृत्रासुर ने मारा, तो वहां आसपास जितने असुर इस युद्ध को देख रहे थे और देवता भी, सबने कहा धन्यवाद धन्यवाद, साधुवाद साधुवाद, देवता भी कहने लगे धन्यवाद। इंद्र की गदा को, आती हुई गदा को पकड़ करके उसी गदा से हाथी पर मारा बाएं हाथ से, इसलिए देवता लोग भी धन्य धन्य कहने लगे, वाह अद्भुत वीर। उस समय यह विचार नहीं रहा कि हमारा शत्रु है और ये है वो, वास्तव में वो प्रशंसा का काम किए थे वृत्रासुर। इस तरह का कार्य की विपक्ष के ही अस्त्र को, आते ही अस्त्र को पकड़ करके और मार देना इस तरह से, तो सर्वे सम पूजन, सभी प्रशंसा किए, साधुवाद दे रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, और असुर जो दूर से देख रहे थे वो तो जय जय बोलने ही लगे। और देवता भी, सर्वे शब्द का यहां तत्पर्य है देवता और दानव सभी सम पूजय अंदर पर, हे महाराज परीक्षित, सभी लोग वृत्रासुर की प्रशंसा करने लगे। ऐरावतो वृत्र गदा विमृष्टो विघूर्णितो दृह कुलिशा हतो यथा, जब गदा लगी ऐरावत के मस्तक पर तो ऐरावत चक्कर काट करके सात धनुष पीछे हो गया। एक धनुष चार हाथ का होता है, चक्कर भी घूर्णी था, विशेष रूप से घुमरी आ गई, इतना जोर से मस्तक पर लगी थी गदा के, रावत की हालत बिगड़ गई। ये दो हाथियों का नाम बहुत प्रसिद्ध है, कुबलयपीड और ऐरावत। कुबलयपीड का वध भगवान ने किया था मथुरा जी, वो तो केवल उसकी पूछ पकड़ करके घुमा फेंका कर पकड़ पटक दी और उसी का दांत उखाड़ करके उसी से हाथी को पीटे और हाथी वाले को भी मार दिए उनका, और हाथी का दांत लिए हुए रंगशाला में प्रवेश किए। प्रथम बार जो ये मथुरा में आयुध लेकर के भगवान विघूर्ण तंत्री कुल सहते जता, जैसे किसी पर्वत पर वज्रपात किया था इंद्र ने पहले, तो पर्वत शिखर हवा में लट्टू की तरह घूमता हुआ जमीन पर गिर गया था। पर्वत उड़ रहे थे आकाश में, अगस्त जी ने वर दे दिया था और उड़ते थे और कहीं कहीं अपनी इच्छा के अनुसार किसी नगर पर जाकर गिर जाते थे। तब भगवान इंद्र ने पर्वतों के पंख को काटा था, तो पंख भी भारी भारी पर्वत थे और जो पर्वत थे वे तो थे ही, तो जब भगवान इंद्र ने मारा था वज्र से पर्वतों को, तो उस समय वे गिर गए थे घूमते हुए चक्कर काटते हुए, तो उस तरह से आया रावत पर्वत की तरह बड़ा शरीर वाला चक्कर काट करके पीछे हटा और गिरा। ये श्री सुखदेव को समय उदाहरण दे रहे हैं। विघूर्णित विशेष रूप से घूर्णित और अपासरत सप्त धनुष, सात धनुष पीछे हट गया, भिन्न मुख मुख हट गया, हटने का मतलब मुख खोल दिया, सहेंद्र और इंद्र के साथ मुंचन अश्रिक्षत और उसके मुख से खून आने लगा। ऐरावत ना जोर से लगा था घाव पे, अपने आप खून आने लगा मुख से। स न सन्नवाहाय विषण चेत से, अब इंद्र देवता विषण चित हो गए, एकदम खिन्न हो गए, युद्ध करने का उनका उत्साह एकदम खत्म हो गया। आप तो इस शंका में पड़ गए कि हाय रे अब प्राण बचेगा कि नहीं, जब हाथी की ये दशा हो सकती है एक प्रहार से, तो पता नहीं सूल हाथ में लिया है अब मुझको मारेगा क्या करेगा। विषण चेत से विषण चित्त हो गए, उनको बहुत भय हो गया कि वृत्रासुर मुझे मारेगा, लेकिन प्रायुक्त भूय न सन्नवाहाय विषण चेत से प्रायुक्त भूय स गदन महात्मा। लेकिन वृत्रासुर के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये महात्मा था, महान आत्मा था, महान मन महान विचार, इंद्र पर प्रहार नहीं किया, फिर गदा का प्रहार नहीं किया, चाहे किसी भी अस्त्र का प्रहार नहीं किया। वृत्रासुर चाहते तो उस समय वो इंद्र को मार सकते थे, अथवा गदा को फिर लेकर के ऐरावत पर मार सकते थे, नहीं मार। श्री सुखदेव गोस्वामी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रायुक्त भूय सब गदा महर न प्रायुक्त, फिर उस गदा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि महात्मा महान विचार था कि इसको कहते हैं धर्म युद्ध। यह नहीं कि हजारों सोए हुए आदमी को विस्फोट करके मार दो और कहो कि हम जिहाद कर रहे हैं, ये सब पाप करके नरक में जाने का रास्ता है। जो कोई व्यक्ति युद्ध कर रहा है, युद्ध में आया हो, उस युद्ध में मारने पर भले सदगति होती है, लेकिन असहाय लोगों की हत्या करके और कोई सोचे कि हमारी सदगति हो जाए, ये सब तमोगुणी विचार है वास्तव में, ऐसा होता नहीं। थर्ड क्लास के बुद्धि वाले लोगों का विचार। वृत्रासु एक महात्मा थे, उन्होंने इंद्र देवता पर फिर प्रहार नहीं किया, देख लिया कि इंद्र विषाद में पड़ गए हैं, उनका वाहन सन्न हो गया है, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया है, तो इंद्रो अमृतस्य विकरा विमर्श बीतव व्यथा क्षतवाहो अस्तस्त। भगवान इंद्र ने पहले हाथी को ठीक किया, अपने हाथ से स्पर्श करके देखा, कुछ देरी हाथी होश में आया खड़ा हुआ, तो उसके बाद उस पर चढ़े भगवान इंद्र और चढ़ करके पुनः अवस्थित हो गए युद्ध में, और इसके बाद तो धीरे धीरे देवता भी उठ गए, जैसे मैं कहा कि बांस के झुरमुट फिर खड़े हो जाते हैं, उस तरह से वे लोग भी खड़े हो गए युद्ध में जहां था। लेकिन वृत्रासुर पर अब हथियार चलाने की हिम्मत नहीं खो रही थी देवताओं, सब देखने लगे इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध, तो इंद्र देवता फिर खड़े हो गए युद्ध में, तब वृत्रासुर ने देखा उनको, सतम मृतेन्द्रा हवता मयारिषम वज्रायुधम भ्रातृहरं विलोक्य स्मरण सतत्कर्म निशंसमंह शोकेन मोहेन हसन जगाद। फिर वृत्रासुर ने देखा कि इंद्र पुनः अवस्थित हो गए युद्ध के लिए। कौन? इंद्र ऋतु, मेरा शत्रु। और फिर ध्यान देने लगे, वज्रायुधम, हाथ में वज्र लिया हुआ है, जो वज्र वृत्रासुर का वध करने के लिए बनाया गया था और उसके पूरे इतिहास को वृत्रासुर जानते थे कि यह वज्र मेरे वध के लिए बनाया गया है और इंद्र के हाथ में वज्र है। वज्र को भी देखे और इंद्र के पाप का स्मरण होने लगा, भ्रातृहरण, यह मेरे भाई का विश्वरूप का वध किया है, ये बात याद आने लगी। यह देख करके फिर और इंद्र के दूषित कर्म को गुरु के वध रूपी महापाप का स्मरण करके शोकेन मोहेन हसन जगादौ, तो भाई के वध का स्मरण करके शोक होने लगा। तो शोक के वश में होकर के और मोह के वश में होकर के इंद्र का तिरस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, जिसा आगे कहा जाएगा। तिरस्कार कर रहे हैं, हसन, हसन का अर्थ उपहास करते हुए, यहां हसन का अर्थ है हंसते हुए नहीं। संस्कृत में कभी कभी हंसने का अर्थ होता है तिरस्कार करना, उपहास करना। तो इंद्र का तिरस्कार करते हुए, उनको बहुत नीच कहते हुए इस तरह से कहने लगे। उनको शोक भी हो रहा था भाई के मरने का, और मोह न, मोह कि मैं वह हूं, यही असुर विचार इनको दबा रहा था। इसी को कहते हैं गोता जाना, गोता जाते थे तो असुर भाव में निमग्न हो जाते थे। तो शोक से और अतिशय मोह से कि मैं वृत्रासुर हूं, मेरा भाई मारा गया है, मेरा ये, मैं इस परिवार का हूं, इसको मोह कहते हैं। और वास्तव में यह जो मोह है, यह बहुत बड़ा ज्ञान है जिनका। वृत्रासुर भाई कब हुए? विश्वरूप के मरने के बाद इनका भाई हुए। ये तो पहले चित्र केतु थे, यज्ञ करके इनको प्रकट किया गया, पहले से कोई संबंध नहीं था विश्वरूप से, लेकिन अब उस पिता के यहां जन्म लिए और वो भी मां से जन्म नहीं लिए, यज्ञाग्नि से जन्म लिए, फिर भी भाई है, भाई मारा गया। अरे इसको मोह कहते, मेरा भाई। इसी तरह मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, वो केवल इसी जन्म में थोड़ा सा संबंध है, पहले का कोई नाता नहीं। यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मोह में वृत्रासुर थे और शोक में थे। और याद क्या आ रहा था? इंद्र के द्वारा विश्वरूप के वध की बात याद आ रही थी, बस निरसंस कर, यही याद करने चाहिए? नहीं, भगवान की लीलाओं की याद करनी चाहिए। वृत्रासुर जी उस स्तर के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन माता पार्वती के साप के कारण इस तरह से अभिभूत थे कि उनमें अज्ञान रह रह करके छा रहा था, और शोक में मोह में इंद्र का तिरस्कार करते हुए बोलने लगे। उस समय इंद्र के अहंकार तथा अपराध का और तत्कर्म निरसंसम, इंद्र के निरसंस कर्म की ही याद आ रही थी। इसने ऐसे वध किया हमारे भाई का, इसने मस्तक काटा और तीनों मस्तक काट दिया, युद्ध में यह स्मरण आ रहा था, इसलिए क्रोध बढ़ रहा था, शोक बढ़ रहा था और मोह तो प्रदीप्त था, इस तरह से बोल रहे। वृत्रासुर जी यहां से बोलना प्रारंभ करते, वृत्रवाच दृष्ट्या भवान में समवस्थित रिपु यो ब्रह्म महाभ्रातृहा गुरुहा भ्रातृहा च दृष्ट्या अनुद्याम सत्तमोत्तरा मच्छेल निर्भिन्न दृश हृदाचिरा। वृत्रासुर कहते हैं शोक में है और मोह में और क्रोध से कहते हैं, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि तुम मेरे सामने आज उपस्थित हो। तुमने ब्राह्मण का वध किया है ना, विश्वरूप एक ब्राह्मण थे, वृत्रासुर भी ब्राह्मण है, तुमने ब्राह्मण का वध किया है, तुमने अपने गुरु का वध किया है, और मेरे भाई का वध किया। बहुत बड़े भाग्य की बात है कि तुम मेरे सामने आ गए। आज मैं अपने भाई के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा तुम्हारा वध करके। दृष्ट्या अनुग्रहम अद्य महस असत्यम, अरे असत्यम, अरे सबसे नीच, इस संसार में सबसे दुष्ट, इस तरह से बोल रहे हैं। इंद्र भगवान ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि उनको इस तरह का शब्द प्रयोग किया जाए, लेकिन मृतरासुर साप बस आसुर भाव से युक्त है, इसीलिए गाली दे रहे हैं। अरे असत्यम, इस संसार में सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे असत्यम, अभी मैं अपने सूर्य से तुम्हारे शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दूंगा। तुम्हारा हृदय पत्थर के समान कठोर है, लेकिन यह सूर्य इस पत्थर को ही फाड़ देगा। देखो, इसी सूर्य से तुम्हारा हृदय फाड़ दूंगा, और आज फाड़ूंगा, अद्य से तात्पर्य अचिरा, शीघ्र ही, और आज ही तुम्हारा हृदय फाड़ दूंगा और अपने भाई के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। इस वर्ष में जन्म लेने का मुझ पर एक ऋण है कि जो हमारे भाई की हत्या किया है उसका बदला चुका लेना, और आज मैं तुमसे बदला चुका लूंगा। इसीलिए यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरे सामने आ गया, आज मैं तुमको मार करके रहूं। ये ब्राह्मण भतवान, विशेषता से गुरु मम से भ्रातर भतवान, सब भगवान अग्रतः समवस्थित, ये तो दृष्टिया भद्रम जाता, ये दृष्टिया एक अव्यय है, इसका अर्थ है आनंदार्थ है, आनंद की बात है कि तुम मेरे सामने आ गए। सामने आ गए एक नहीं, आनंद नहीं है, आनंद इसलिए है कि सामने आ गए हो तो आज मरोगे, यह बहुत अच्छी बात। सूल दिखा करके मित्रासु कह रहे हैं, ममसूलेन निर्भिन्नम दृषभ तुल्यम हृदय हृदय जस्य तेन त्वया अद्य निमित भूतेन अचिरादेव भ्रातु अनिर्णो अहम् श्यामि तच्च दृष्ट्या। दो बार दृष्ट्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरे सामने आ गए, और बहुत अच्छा है कि आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त। अरे पापी कहेंगे, तुम जिस समय ब्राह्मण का वध कर रहे थे ध्यान नहीं आया कि ब्राह्मण का वध कर रहा हूं, और अपने गुरु का वध किया है ना, जिन्होंने तुमको सारा मंत्र तंत्र सिखाया, असुरों पर विजय दिलाया, नारायण कवच पढ़ाया, कई तरह से भगवान की भक्ति सिखाया, और तुमको इस तरह इंद्र पद पर अवस्थित रखा, उस गुरु का वध किया है और मेरे भाई का वध किया है। तुम्हारा हृदय निश्चित पत्थर के समान, पत्थर से भी अधिक कठोर, ऐसे कर कैसे गुरु का वध कर दिया, कैसे ब्राह्मण का वध किया। यो न ग्रजस्य आत्मविदो दिराते गुरुर पापस्य च दीक्षितस्य विश्रभ्य खड्गे न शिरांश वृश्च पशो विवाह करुणः स्वर्ग कामः। अरे स्वर्ग कामी, तुम स्वर्ग को भोगना चाहते हो, और उसी स्वर्ग को भोगने की लालसा से तुमने मेरे अग्रज का वध किया, मेरे बड़े भाई का वध किया, जो वध के योग्य नहीं थे। यदि तुम्हारा कुछ भी बिगाड़े होते तब तुम उनका वध कर सकते थे, और यदि वे कोई दुराचारी होते, पाप किए होते, तो तुम वध कर सकते थे, लेकिन वध लायक नहीं थे। इसी को कह रहे आत्मविद, वे आत्मज्ञानी थे, भगवान का तत्व जानते थे, भगवान के भक्त थे, और उनका तुमने वध किया है, तुमने वैष्णव की हत्या की है, ब्राह्मण की हत्या तो की ही हो, तुमने एक साधु की वैष्णव की हत्या किया है, और द्विजाति, तुमने द्विजाति का, द्विज का, जो अनेक संस्कारों से युक्त थे, उनका वध किया है। गुरु, तुमने अपने गुरु का वध किया है। एक ही व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, विश्वरूप आत्मवेत्ता भगवत भक्त थे, द्विजाति थे, गुरु थे, और अपाप, कोई पाप नहीं किए, कोई अपराध नहीं किए, और ऊपर से दीक्षित थे, यज्ञ करा रहे थे, तुम्हारे हित के लिए यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते समय अरे पापी तुमने उनका तीनों मस्तक काट डाला, जैसे कोई अकरुण व्यक्ति कसाई किसी पशु को विश्वास दे करके उसका गला काट देता है। कसाई ऐसे होते हैं, पशु को घास भी डालते हैं, सहलाते भी, और जब असावधान रहता है बस तलवार मार करके खत्म कर देते हैं। इस तरह से तुमने विश्वास देकर के मारा ना, गुरु बना करके ले गए, उनके आश्रम पर जाकर के उनको गुरु बना करके लाए थे, यज्ञ करा रहे थे, तुम्हारा कोई अपराध इन्होंने नहीं किया था, वे निष्पाप थे, लेकिन तुमने उनका मस्तक काट लिया, तीनों मस्तक काट लिया। अरे खल, एक भी छोड़ दिया होता तो जीवित रहते, लेकिन तुमने तीनों मस्तक काटा है। तीनों मस्तक काटने से तात्पर्य यह है कि एक मस्तक से हो सकता है देवताओं का बल बढ़ा रहे थे, दैत्यों का, एक से, लेकिन दो सिर से तो तुम्हारा हित कर रहे थे ना, दुगना तुम्हारा हित कर रहे थे, लेकिन पापी, तुमने उनका जिस तरह से मस्तक काटा है ना, उसी तरह से तुम्हारा मस्तक काट हुआ। वृत्रासुर जो भी बोल रहे थे, कभी कभी शोक और मोह में इस तरह से मग्न हो जाते, अतः इसलिए बोल रहे थे। वे हमारे विश्वरूप, हमारे अग्रज थे, आत्मविद्ता वैष्णव थे, द्विजाति थे, गुरु थे तुम्हारे, अपाप थे और दीक्षित थे यज्ञ में। जैसे कोई भगवान की पूजा कर रहा हो और उस समय कोई पापी जाकर के उसका वध कर दे, यह और ज्यादा अपराध। तो उस तरह से वे यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का अर्थ भगवान की आराधना कर रहे थे, उस समय तुमने वध किया, विश्रभ्य विश्वास देकर के, खड़गे न सिरान से दृश्य, तलवार चलाते समय तुम्हें शर्म नहीं आई, गुरु के मस्तक पर तलवार चलाए, पशु यह अकर्ण स्वर्ग काम। इसका दो अर्थ है, इंद्र के लिए स्वर्ग काम कह रहे हैं मित्रासु, तुम सदा स्वर्ग भोगना चाहते हो, अथवा स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा वाले कुछ ब्राह्मण जैसे यज्ञ करते हैं, कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो पशु का गला काट देता है, पशु को यज्ञ में डाल काट कर, तो उस तरह से तुमने विश्वास दे करके और गुरु का, ब्राह्मण का, वैष्णव का वध किया। हे श्री दया कीर्ति जीवन का, तुम तो वैसे ही मर चुके हो, तुम अपने कर्म से मर चुके हो, तुमको लज्जा ने छोड़ दिया है, अर्थात तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं है, तुम्हें लज्जा नहीं है, यह काम करते समय, गुरु का वध करते समय तुम्हें कोई लज्जा नहीं रही, और श्री तो तुमने है ही नहीं, तेज नहीं है, दया नहीं है और कीर्ति नहीं है, सुबह जाकर के दुनिया में तुम पर लोग थूक रहे हैं, तुम स्वर्ग तो भोगना चाहते हो लेकिन ह्री श्री दया कीर्ति भी उज्जित, तुम चार से हीन हो गए हो, तुम्हें कोई लज्जा नहीं है, तुम्हें श्री नहीं है, दया नहीं है और कीर्ति नहीं है, तो तुम तो ऐसे ही मरे हुए, स्वकर्मणा पुरुषादेश गर्यम, तुम अपने कर्म से राक्षसों के द्वारा भी निंदनीय हो गए, राक्षस भी अपने गुरु का वध नहीं करते, लेकिन तुम तो अपने गुरु का वध किए हो, राक्षस भी तुम्हारी निंदा करते हैं, निंदनीय हो, इतना गलत काम किए हो, स्वकर्मणा पुरुषादेश गर्य, पुरुषाद कहते हैं राक्षसों को, जो पुरुष को अध खा जाते हैं, जो मनुष्य को खाते हैं उनको नराद या पुरुषाद कहते हैं, पुरुष को खाते हैं, तो पुरुष को खा जाते हैं राक्षस, लेकिन वे भी किसी ब्राह्मण को और गुरु को नहीं खाते हैं, या वैष्णव को नहीं खाते हैं, कोई कोई बहुत भयंकर असुर होता है वैष्णव को भी खाया करता है, लेकिन उसमें भी गुरु को नहीं खाते, उनका जो पुरोहित होता है, यज्ञ आदि कराता है, हित करता है, उसको नहीं खाते, परंतु तुम तो खा गए अपने गुरु को, काट दिए मतलब तुम खा ही गए ना, स्वकर्मणा पुरुषादेश करे, और स्वकर्मणा से तात्पर्य यह है जो तुमने काम किया है, विश्वरूप का वध किया मेरे बड़े भाई का, यह तुम्हारा काम था, तुमको कोई सलाह नहीं दिया, कोई देवता नहीं कहे, कोई ऊपर से नहीं कहा कि ये मारो मारने लायक है, तुम्हारा कर्म था, तुम्हारा निर्णय था नीच कहीं के, जिस तरह से तुमने मेरे भाई का और अपने गुरु का वध किया, कृष्ण मत्सुंड विभिन्न देहम अस्पृष्ट बहनी समदन की गृद्रा, मैं बहुत ही देर करके तुम्हारा गर्दन काटूंगा, जल्दी नहीं काटूंगा, पूरा छछना करके मारूंगा, कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण का अर्थ है कि एक दो मिनट में नहीं मारूंगा, दो चार महीना लगाऊंगा काटते काटते, और इस तरह से छटपटा करके मरोगे, और एक एक देह को काट करके एक एक अंग को अलग अलग करूंगा, तुम्हारा हाथ काटूंगा, पैर काटूंगा, मस्तक काटूंगा, पेट फाड़ूंगा, सब काट करके और गिद्धों को डालूंगा, जलाने नहीं दूंगा, जलाने पर तुम्हारी सदगति हो जाएगी, जलाने नहीं दूंगा, फेंक दूंगा, गिद्ध खाएंगे। इस तरह से इंद्र देवता से बोल रहे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। बाद में कहते हैं कि मारिए मारिए हमको मारिए, इंद्र से ही प्रार्थना करो। इंद्र इस तरह से बोल रहे हैं, समदंत गृद्ध अस्पृष्ट बहनी, तुम्हारे देह का स्पर्श आग से नहीं होगा, बहनी मतलब आग, आग में नहीं जलाएगा, जलाया जाओ, क्योंकि कौन आएगा तुमको जलाने के लिए, किसकी हिम्मत होगी कि तुम्हारे लाश को, तुम्हारे शव को कोई जला दे, कोई नहीं जलाएगा। मैं टुकड़ा टुकड़ा करके सियार और गिद्ध को बांटूंगा, रात में सियार को बांटूंगा, दिन में गिद्ध को दूंगा, कुत्ते। तो विभिन्न देहों का अर्थ है कि इतना टुकड़ा करूंगा कि उनको खाने में आसानी होगी, बहुत ज्यादा नोचना कठिना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल टुकड़ा करके बल्कि पैकेज बना बना करके दे, खाएंगे खूब आसानी से खाए। तुम जो इतना खा करके मोटा हुए हो स्वर्ग में, सब निकाल दूंगा। भगवान इंद्र सुन रहे हैं, अस्पृष्ट बहन, इससे सिद्ध होता है कि जिन लोगों को आग में जलाया जाता है तो अग्नि के संस्पर्श से उनके पाप जल जाते हैं और उनकी सदगति होती है। अरे जमीन में गाड़ने से या कुत्ते को डाल देने से अधोगति होती है, ये सिद्धांत है शास्त्रों का। इसीलिए हम हिंदुओं में प्रथा है शरीर को जला देना चाहिए, जला देना चाहिए, और थोड़े से जमीन में बहुत बड़ा काम हो जाता है। और नहीं दूसरों की तरह एक एक मुर्दा गाड़ते जाइए तो एक दिन पूरा पृथ्वी मुर्दों से भर जाएगी, जीवित को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, है ना। यदि वास्तव में इस तरह से विस्तार किया जाए तो दो चार मीटर एक घेरा तो दूसरा घेरेगा, घेरते घेरते जाए तो जीवित लोग कहां जाएंगे, समुद्र में रहेंगे। जब मुर्दे ही सारी दुनिया में भर जाएंगे तो जीवित कहां जाएंगे। तो जो वैदिक सिस्टम है बहुत अच्छा है, थोड़ी सी जमीन हो उसमें लाखों करोड़ों सौ जलाए जा सकते, फिर खाली हो जाता, भस्म उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। वृत्रासुर जी कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर को जलाने नहीं देंगे इंद्र को, नहीं भगवान इंद्र का शरीर ऐसा नहीं है कि जलाया जाए और ये जाओ, स्वयं अग्नि में है, स्वयं वायु में है, आकाश में है। लेकिन यह एक कहावत है, वास्तव इस तरह से कहा जाता है तुमको जलाने नहीं दूंगा, सदगति हो जाएगी उस जलाने से। इसका मतलब कि ऐसे मारूंगा और परलोक भी तुम्हारा बिगड़ेगा, परंतु उस व्यक्ति की वास्तव में अधोगति नहीं होती है जिसके शरीर को दूसरे जीव खाते हैं, उससे कुछ पुण्य लगता है, कुछ पुण्य प्राप्त होता है। कई लोग तो ऐसा मनोरथ किए हैं कि हमारे शरीर को दूसरे जीव खाते, क्या होगा शरीर से, लेकिन भस्म करना शरीर को ज्यादा निरापद है। अच्छा यही है, तो मैं तुम्हारे शरीर को जलाने नहीं दूंगा। और समदंत गृद्ध, गृद्ध खा रहे हैं, वर्तमान सामिप्य वर्तमान वर्त, समदंती का अर्थ खा रहे हैं, गृद्ध खा रहे हैं, उसका अर्थ है कि खाएंगे, जो वर्तमान में क्रिया, वर्तमान के निकट क्रिया होने वाली होती है उसको बिल्कुल होती ही वर्णन कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं मृताशु कि तुम्हारे शरीर को गिद्ध खा रहे हैं, अर्थात तुरंत खाएंगे, इसमें देर नहीं, यह भाव है इसका। और ये कहकर के कहते हैं, यदि मान लीजिए भगवान इंद्र कहे कि कैसे तुम मेरा वध कर सकते हो, और भी हमारे साथी हैं ये, तो कहते हैं अन्य ये अनुशंस मत दिया, अरे नृशंस, अरे कठोर व्यवहार वाले, ये जो लोग अज्ञ लोग हैं, ये मूर्ख जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, ये देवता जो हाथ में अस्त्र लिए हैं, अभी मरे हुए जैसे पड़े थे अब खड़े हो गए हैं, मैं इनको पैर से रौंदा हूं, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे यदि खड़े होकर के और हथियार लेकर के मुझ पर प्रहार करने की कोशिश किए ना, तो मैं इन लोगों के द्वारा भूतनाथों का भजन करूंगा, यजन करूंगा, पूजा करूंगा, इन लोगों के द्वारा पूजा करूंगा। कैसे? अपने तीक्ष्ण सूल से इनका मस्तक काटूंगा सबका, और उसे जो ताजा रक्त निकलेगा वो अर्पण करूंगा भूतनाथों को, भैरव आदि को पिएंगे, और इनके मस्तक को फेंकूंगा, नई नई माला बनेगी, मुंडवाल पहनेंगे वो लोग, भगवान शिव के कैलाश में नए नए मस्तक जाएंगे, और वहां के जितने भूतनाथ हैं, भैरव या चाहे भगवान शिव आदि, वो नए मुंड की माला पहनेंगे। इस तरह से पूजन करूंगा, आज भूतनाथों की उपासना करूंगा। भूतनाथ हम सगड़ा, तुम लोग 33 करोड़ से भी ज्यादा संख्या में हो, बहुत ज्यादा संख्या में हो, इतना मस्तक काट करके भेजूंगा तो भूतनाथों को तो नई मुंडवाल बनेंगे ही सगड़ा, उनके जो गढ़ है नौकर चाकर सब भी नई नई माला पहनेंगे। समझ गए ना? खून ताजा ताजा पीने को दूंगा उनको, दूंगा क्या, भेजना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। स्मशान भूमि में जहां वध होता है बहुत लोगों का, तो भूत प्रेत स्वयं ही आकर के वो गेंदा खेलते हैं मस्तक का, फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा वर्णन है भागवत, मस्तक का फुटबॉल खेलते हैं। जब भरत जी को मारने के लिए डाकू ले गए थे और भद्रकाली ने जब काटा वहां पर डाकुओं को, ये लिखा गया है कि भद्रकाली के जो गढ़ थे वे लोग फुटबॉल खेलने लगे उनके मस्तक से, और उनके मस्तक कटने से, शरीर कटने से जो गरम गरम खून निकला उसको खप्पर में लेकर के पीने लगी, उसे नाचने लगी भद्रकाली की जो सहेलियां थी, वैसे ही उनके समान ही भयावह थी, वो सब गाने लगी, नाचने लगी, खून पीने लगी। तो मैं इस तरह से पूजा करूंगा, अगर ये लोग खड़े हुए ना तो सबको काट करके और भैरवनाथ आदि की पूजा दूंगा, सब खुश हो जाएंगे। अगर ये केवल हथियार उठाए तो मैं इनको बता दूंगा। इस तरह से कह रहा, तुमको तो मारूंगा ही, पहले तो तुम्हारे हृदय को फाड़ूंगा जो पत्थर की तरह है, इसके बाद तुम्हारा मस्तक काटूंगा, और तुम्हारा अंग अंग काट करके गिद्धों को डाल दूंगा, और ये खड़े हुए तो फिर इनको बता दूंगा। इनके द्वारा पूजा कर खूब अच्छा से, जैसे हम लोग फूल की माला पहनते हैं, ऐसे भूतेश्वर भगवान शिव मुंडमाल पहनते, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, भागवत में वर्णन है सब जगह। और वे राख लगाते हैं, वो तो जो शव जलाए जाते हैं, और खास करके जो हड्डियां जलती हैं किसी मनुष्य की, तो जलती हुई हड्डी के भस्म को भगवान शिव अपने हाथ में, हाँ अपने शरीर में ग्रहण कर लगाते, ऐसे लगा। एक बार मैं उज्जैन गया था तो महाकालेश्वर भगवान है वहां पर, एक जगह पर कुछ भस्म रखा हुआ था, तो कहते थे प्रसाद है प्रसाद, तो पंडा था वो लेकर के प्रसाद हमको लगाना चाहता था, और पहले कहा कि आप लगाइए, तो मैं कहा नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, ये प्रसाद भगवान शिव को ही रहने दीजिए। मैं नहीं छूआ। देखा कि आदमी का शरीर जला हुआ ताजा भस्म, रोज भस्म नया आता है ताजा वहां के स्मशान, और महाकालेश्वर को लगाया जाता है। नहीं भैया, हम इसके योग्य नहीं है। और दूसरे सब भक्त लोग ले लेकर के लगाए, हमको हिम्मत नहीं पड़ी ना, हमने लगाया। भगवान की पुष्पमाला धारण करते हैं लोग, चंदन लगा लेते हैं, लेकिन चीता का भस्म लगाना चालू करे तो घर का काम। वृद्धाश्रम जी कहते हैं कि खूब अच्छी पूजा करूंगा भूतगणों की, सगड़ा उनके नौकर चाकर सब जितने हैं सब, तो श्रृंगार भी होगा उनका, और इसके साथ साथ फीस्ट भी होगा उनका, तो खून मांस सब आकर के खाएंगे पिएंगे, सबको मारकर खत्म करेंगे। यह कह रहे थे तब तक भाव बदल गया भूतराशि को, देखिए जो वैष्णव भाव है वो आ गया। तो फिर कहते हैं, अथवा हे हरे, हे इंद्रदेव, हे वीर, आप भी तो विश्वविख्यात वीर हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वज्र से आप मेरा मस्तक काट सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब तो कह रहे थे कि मैं आपका वध कर दूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा। अब कहते हैं, अथो हरे में कुलिसेन वीर हरता प्रमथ्य वशिरो जदीह तत्रा निर्भूत बलिं विधाय मनस्विनां पादरज प्रपत्से। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कुलिस से वज्र से मेरा मस्तक सिरह हरता हरिष्यत हरिष्यत, आप भगवान सपोज आप हो सकता है हमारा मस्तक काट ले। तो जानते हैं ऐसा होने पर क्या करूंगा मैं, आप तो मेरा शरीर देख रहे हैं ना, वृत्रासुर जी कहते हैं। तो मैं जितने संसार में जीव हैं, गीध कौवा सियार या जितने मांसाहारी जीव हैं, सबको बहुत बड़ा भोज दूंगा, मेरे शरीर को लोग खाएंगे और मैं जाऊंगा भगवान के धाम में। कहने का आशय, यदि आप हमारा सिर काटते हैं तो मैं भूत बलि दूंगा, क्योंकि वृत्रासुर जानते थे कि हमारे शरीर को जलाने वाली धर्म संसार में है ही नहीं, कौन जलाएगा इतना भारी शरीर को। तो भूत बलि विधायक और इंद्र के लिए हरि शब्द कह रहे हैं, और वीर इंद्र भी एक विश्वविख्यात वीर है। इंद्र को सदा युद्ध करना पड़ता है, पहले तो सब अश्वमेध यज्ञ करने में उनको युद्ध करना पड़ा होगा, जिस समय मनुष्य रहे होंगे इस पृथ्वी पर तो सब अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है इंद्र बनने के लिए। तो एक एक अश्वमेध यज्ञ में ही कितना विजय करना पड़ा होगा, और ऊपर जब इंद्र बन जाता है व्यक्ति तो दैत्यों से भय, इससे युद्ध, उससे युद्ध, रोज तो युद्ध ही है, और इन समस्त युद्धों में इंद्र जीत जीत करके तो टीके थे ना। तो वृत्रासुर जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप ही मेरा वध कर दें, क्योंकि आप भी तो एक वीर हैं और आपके हाथ में कुलिस है, वज्र है। कुलिस शब्द का करके याद दिला रहे हैं कि ये जो वज्र बनाया गया है मेरा वध करने के लिए बनाया गया है। तो जब ईश्वर की ये योजना है, भगवान की इच्छा है और आप एक वीर हैं ही, तो हो सकता है कि आप मेरा मस्तक काट दें। कितनी सुंदर वाणी निकल रही है, युद्ध का मैदान है लेकिन ऐसे कह रहे हैं हो सकता है आप मेरा वध कर दें। जब तत्र इस स्थिति में तदा जब मेरा वध आप कर देंगे तो जानते हैं मैं क्या करूंगा, भूत बलिं विधाय मैं अपने विशाल देह से भूत बलिं विधाय, भूत माने जीव, जीवों को बलि दूंगा, भोजन दूंगा, मेरे शरीर को ये लोग खाएंगे, इधर सब जीव सुख में होंगे, उनका फिस्ट होगा, मैं कहां जाऊंगा मनस्विनाम पाद रजह प्रपक्ष से, मैं धीरों के पद को प्राप्त करूंगा, उनके चरण रज को प्राप्त करूंगा। धीर मतलब नारद आदि महानुभाव बड़े बड़े भक्तों को मनस्वी कहते हैं, धीर कहते हैं। मैं जाऊंगा वे जहां जाते हैं, वे भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान की सेवा में जाते हैं, तो मैं तो जाऊंगा भगवान की सेवा में। शरीर का इधर बहुत हमको भी लाभ है, मैं वैकुंठ जाऊंगा, आपको लाभ है कि आप स्वर्ग में निर्विघ्न रहेंगे, हमारा धर्म भय नहीं रहेगा, और जीव भी खुशी से नाचेंगे कि इतना भारी मांस और खून मिला खाने के लिए, तो ये अवसर दीजिए हमको, यही इनका इनकी वास्तविक इच्छा है। मनस्वी नाम का अर्थ धीरा नाम पदम प्राप्त से, मैं धीरों का पद प्राप्त करूंगा, मनुष्यों के चरण रज को प्राप्त करूंगा, भक्तों के चरण रज को मैं प्राप्त करूंगा, अर्थात यह शरीर छोड़ करके मैं भगवान के पास जाऊंगा। यह जब बात इंद्र ने सुना तो इंद्र देवता तो लड़ने का विचार ही छोड़ दिए। प्रथम वाक्य से मनस्वी नाम पाद रजह प्रपद से जब सुने भक्तों के पद को मैं प्राप्त करूंगा, भगवान के धाम में जाऊंगा, इंद्र देवता वज्र को नीचे कर लिए और अब मारने की हिम्मत उनको नहीं हो रही थी। वो समझ गए कि ये तो कोई असुर नहीं है, ये तो महान वैष्णव है, और वे शक पका गए बिल्कुल, जबकि वज्र लेकर के तैयार थे मारने के लिए पहले, लेकिन स्तंभित हो गए, कुछ देर होने लगी। तब वृत्रासुर कहते हैं, हे इंद्रदेव, मैं इस जीवन से भी मृत्यु को श्रेष्ठ मान रहा हूं, इसलिए आप मुझे मारिए। सुरेश कस्मान नहीं नौ शिवज्रम पुरस्थित वैमयोहम मां संश्रेष्ठा न गदेव वज्रम श्या निष्फलम कृपणार्थे वयांचा। हे सुरेश, हे देवताओं के ईश्वर, वज्रम कस्मान न हिनोसी, आप वज्र को क्यों नहीं मुझ पर चला रहे हैं? आप क्यों नहीं वज्र को चला रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? चलाइए चलाइए मुझ पर वज्र चलाइए, मैं आपका प्रसिद्ध वैरी हूं। आपने देखा ना आपके हाथी को कितने जोर से मैं मारा और आपकी सेना को मैं किस तरह रौंद रहा था, देखा? आपका मैं वैरी हूं, आपको मारने के लिए मुझे उत्पन्न किया गया है, आप मुझे मारिए नहीं तो मैं मार दूंगा आपको। ये कहते हैं मुझे इसीलिए पैदा किया गया है, वैरी मैं आपका वैरी हूं और पूरा स्थिति आपके सामने आ गया हूं और आपके हाथ में अमोघ वज्र है, यह निष्फल नहीं होगा। जो वज्र आपके हाथ में है वो भगवान की इच्छा से बना हुआ है और महान भक्त दधीचि मुनि का तेज है इसमें, तपस्या का। तो आप मुझे मारिए, क्यों नहीं चला रहे हैं? सुरेश कस्मन न हिनोसी वज्रम, वज्र क्यों नहीं हम देते हैं, चला देते हैं, क्यों नहीं चला रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? अब कब समय आएगा वज्र चलाने के लिए? आप ये बताइए, वज्र किसके लिए उत्पन्न किया गया है? मुझे मारने के लिए ना, और मैं आपका प्रसिद्ध शत्रु सामने आ गया हूं, चलाइए। तो मान लीजिए अगर इंद्र भगवान कहे कि गदा इवन निष्फलम जास्यति इति विभेन, मैं डर रहा हूं कि वज्र भी गदा की तरह निष्फल हो जाएगा इसलिए नहीं चला रहा हूं। मान लीजिए अगर इंद्र देवता कहे, पहले गदा को चलाए थे तो उसी गदा को वृत्रासुर पकड़कर हाथी पर चला दिए, और इंद्र वज्र चलाएंगे और उसी वज्र को पकड़ कर यदि वृत्रासुर इंद्र पर चला दिए तब क्या होगा? तो भगवान इंद्र को एक भय भी हो गया, चलाना खतरनाक है, जब तक मैं इस पर चलाया नहीं तब तक यह वीर मुझ पर नहीं प्रहार किया। इंद्र देवता ने देखा था, पहले मैं इस पर प्रहार किया तब ये मुझ पर प्रहार किया, अगर दूसरी बार मैं वज्र चला दूंगा और वज्र लेकर के हम पर चला दे तो फिर क्या होगा? इसलिए चला नहीं रहे थे। और दूसरी बात यह थी कि वे वैष्णव समझ करके नहीं चला रहे, एक ब्राह्मण की हत्या किए थे, उसी ब्रह्म हत्या का पाप किसी तरह से धोए थे, और वृत्रासुर का वध करके दूसरा पाप नहीं कमाना चाहते। यद्यपि भगवान ने कहा था, देवताओं ने कहा था, ऋषियों ने कहा था, सबने कहा था कि मारिए, लेकिन इंद्र देवता अंततः एक महान वैष्णव है, भक्त है, उनका मन बदल गया, हाथ में वज्र लिए हैं, हाथी पर चढ़े हैं, लेकिन चला नहीं। मां संश्रेष्ठ, जब इंद्र ने कहा कि मैं डर रहा हूं कि गदा की तरह यह वज्र भी विफल हो जाएगा, तब कहते नहीं नहीं मां संश्रेष्ठ, आप संशय मत कीजिए, न गदेर वज्रम, ये वज्रम, यह जो वज्र है गदा ही, वह निष्फलम न स्यात, ये गदा की तरह निष्फल नहीं होगा। गदा में और आपके वज्र में बहुत अंतर है। एक उदाहरण दे रहे हैं, जिस तरह से कोई याचना कृपणार्थे व यांचा, किसी कृपण से, किसी कंजूस से जो प्रयोजन साधने वाली याचना हो वो विफल हो जाती है, उस तरह से आपका वज्र विफल नहीं होगा। दो तरह की याचना होती है, याचना का अर्थ मांगना। एक तो मांग होती है किसी दानी से, दानी से कुछ मांगते हैं तो मिल जाता है, लेकिन एक नंबर के कंजूस से, कृपण से मांगेंगे तो याचना व्यर्थ चली जाएगी। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि जैसे महाकृपण से, कंजूस से की गई याचना व्यर्थ हो जाती है, उस तरह से वज्र व्यर्थ नहीं होगा, ये तो मारेगा, निश्चित मारेगा, इसलिए आप मुझ पर वज्र चलाइए। बहुत सुंदर बात कह रहे, क्यों नहीं चला रहे हैं? जिस पर चलाने के लिए वज्र बनाया गया वो आपके सामने है, जब सामने भी आकर के आपसे मित्रता नहीं किया है, सीधा शत्रुता कायम रखा है, और आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं यदि नहीं मारे मुझको तो मैं आपको खत्म करके रहूंगा, तो इंद्र को क्रोध दिलाने लगे। बाद में पहले तो विनय कर रहे थे, बाद में क्रोध दिलाएंगे, इंद्र को मारने की धमकी देंगे, और यहां तक कि मारेंगे भी, ठुड्डी पर मारेंगे। तब जाकर के इंद्र को क्रोध हुआ और उन्होंने मारा था वृत्रासुर। इंद्र ने देखा कि यदि नहीं मारता हूं मैं तो ये तो मार ही डालेगा, लेकिन अभी विनय कर रहे हैं, न संशयिष्ठा न गदेव वज्रम श्याम निष्फलम कृपणार्थे वंश। कितने लोग ऐसे कृपण होते हैं, वास्तव में उनसे कोई मांगे लेकिन उनकी याचना विफल हो जाती है। यहां याचना से तात्पर्य है अपना व्यक्ति भी, जैसे पत्नी बच्चे भाई कुछ मांगे तो कृपण व्यक्ति उनको भी नहीं देता है, वो बचा करके रुपया रखता है, सड़ जाए गल जाए दूसरा ले ले, लेकिन बच्चे स्त्री भाई भी सब दुख में रहते हैं, उनको नहीं दे पाते, उसको एक नंबर का कंजूस कहते हैं। अरे भीख मांगे भीख मांगते रहते हैं, तुमको कोई दिया कोई नहीं दिया, ये कोई खास कंजूसी नहीं, लेकिन कंजूसी असली वह याचना की जाती है विफल हो जाती। वृत्रासुर जी एक व्यंग कर रहे हैं उन लोगों पर भी जो लोग किसी के मांगने पर कुछ देते नहीं, तो विरुद्ध उपमा दे रहे हैं, व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं होगा, तब मुझ पर वज्र चलाइए। फिर वज्र की विशेषता बता रहे हैं क्यों नहीं विफल होगा, अमोघत्वे हेतु बदस्तम प्रोत्साहयति, वज्र अमोघ है यह कहते, इसमें कारण बता रहे हैं क्यों अमोघ है क्यों नहीं निष्फल होगा, यह कहते हुए इंद्र को प्रोत्साहित कर रहे हैं वज्र चलाने के लिए। नन्वेश वज्रस्तव शक्र तेजसा हरे दधीचे तपसा च तेजितः, हे हरे हे इंद्रदेव, ननु एष तव वज्र, ये जो आपका वज्र है ऐसा का अर्थ है तव करे अस्थिता, आपके हाथ में जो ये वज्र है जानते हैं क्या चीज है, आप तो सब जानते हैं, आपके सामने बना है, आपकी प्रार्थना से बना है, ये वज्र क्या है। गदा के इतिहास में और वज्र के इतिहास में बहुत अंतर है। ये जो आपका वज्र है, हे शक्र हे सौ अश्वमेध यज्ञ करने वाले हे महावीर, आपका जो वज्र है हरे तेज सा तेजित, भगवान विष्णु के तेज से संपन्न है, और दधीचे तपसा च तेजित, और दधीची मुनि के तपस्या के तेज से तीक्ष्ण हो चुका है, इसका तेज बढ़ गया, इसमें भगवान का तेज है और दधीची मुनि की तपस्या है, इसलिए आपका वज्र विफल नहीं होगा। तेनैव शत्रु जही विष्णु जंत्री को, इसी से तेनैव उसी वज्र से आप अपने शत्रु का वध कर दीजिए, आप मुझे मारिए। माम न कहकर के शत्रु कह रहे हैं, और मैं कौन हूं आपका, आपका शत्रु हूं, यदि नहीं मुझे मारेंगे तो मैं आपकी हालत बिगाड़ दूंगा, ये समझ लीजिए, मैं आपका शत्रु हूं, आपके विरुद्ध में जन्मा हूं, और आपके हाथ में वज्र है, तो तेना एवं उसी वज्र से ही शत्रु जही इस शत्रु का वध कीजिए। अगर आप यह कहे कि ठीक है तुम मेरे शत्रु हो, यह वज्र भी अमोघ है, लेकिन मैं क्यों वध करूं, मैं क्यों ऐसा स्वच्छंद काम करूं, तो कहते नहीं नहीं विष्णु जंत्रिता, ऊपर से विष्णु ने भगवान ने आपको आदेश दिया है मेरा वध करने के लिए, तो भगवान की आज्ञा तो मानेंगे ना, आप तो विष्णु के दास हैं वैष्णव हैं, तो मेरा वध कीजिए क्योंकि विष्णु चाहते हैं मेरा वध करो, विष्णु जंत्रिता विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर के आप मेरा वध कीजिए। तो कई तरह से याद दिला रहे हैं, इसमें भगवान का तेज है, दध्यंग मुनि की तपस्या है, और ऊपर से भगवान ने आपको प्रेरणा दिया है मेरा वध करने के, तो आप भगवान की आज्ञा मानिए और मेरा वध कीजिए। तो इंद्र कहे कि ठीक है, भगवान ने कहा है, भगवान की इच्छा है, तो क्या जरूरी है कि आपका वध मैं कर ही दूंगा, तो कहने हाँ निश्चित निश्चित, जतो हरि विजय श्री गुणाष्टकम्। जहां हरि है, विष्णु है, वही विजय है, वही श्री है, वही सारे गुण है। आप निश्चित विजयी होंगे इंद्रदेव, आप चलाइए वज्र को। मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता। जिस पक्ष में भगवान है वही विजय है, वही श्री है, वही गुण है। वाह वाह, वृत्रासुर का कितना सुंदर वाक्य निकल रहा है। जिस पक्ष में भगवान है वही विजय है, आप जीतेंगे निश्चित। और अपने प्रति भी कह रहे हैं कि मेरे साथ भी भगवान है, भीतर से इनका आशय है, मैं भी जीत ही रहा हूं। आप मुझ पर विजय प्राप्त करेंगे, मैं माया पर विजय प्राप्त करके भगवान का धाम जीतूंगा। तो मेरे साथ भगवान है और आपके साथ भी भगवान है, तो दोनों काम कीजिए, आपको स्वर्ग मिले, आप भी निश्चिंत सोइए, खाइए पिए, और मैं भी जाऊं इस माया से मुक्त होकर भगवान के धाम में। चलाइए वज्र, क्या देर कर रहे हैं। नन्वेश वज्र तवशक तेजसा हरे बधीच तपसा च तेजित। तेजित का अर्थ तीक्ष्णीक, तेनाव शत्रु जहि विश्व जंत्रित जतो हरिर् विजय श्री गुणास्तक। उस विषम युद्ध में और इस प्रकार का सुंदर वाक्य निकल रहा है, जहां हरि है, कृष्ण है, वही विजय है, वही गुण है, वही श्री है, वही सौभाग्य है, सफलता है, धन है, सब कुछ वही, सारे गुण वही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से ये वास्तव में याद रखने लायक सब वचन श्लोक याद रखने लायक है। वृत्रासुर क्या वचन बोल रहे हैं और युद्ध में बोल रहे हैं। शरीर छोड़ना चाहते थे कि इंद्र वज्र चला लें, वज्र को हाथ में दे करके खुश हो रहे थे कि अच्छा इतना निकट मेरा वध करने के लिए वज्र आ गया। तो किसी के मन में शंका हुई तो इसके पहले इतना क्यों कठोर इंद्र से बोल रहे थे। वो पहले इसलिए बोल रहे थे कि वो आसुर भाव रह कर उनको अभिभूत कर रहा था, लेकिन आते आते धीरे धीरे तिरोहित हो रहा था आसुर भाव। इनका जो स्वाभाविक भाव था भगवान के प्रति उभर रहा। हम लोग भी देखते हैं कई बातें, जैसे हम लोग सो जाते हैं, नींद आने लगती है, तो उस समय जो काम करने की शक्ति होती है वो ढकने लगती है। इतना आदमी कमजोरी का अनुभव करता है सोते समय कि स्विच ऑफ भी नहीं कर सकता, और दूसरों को कहता है जरा ऑफ कर दीजिए, अभी सवेरे जग करके फ्रेश हो जाता है। कभी बीमार हो जाते हैं, कभी भूत लग जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे इनका असर उतर रहा है अपने स्वरूप में हो रहा है। स्वरूप में होने पर नहीं चाहते हैं कि मैं इस असुर शरीर में रहूं और भक्तों को देवराज इंद्र आदि को मैं दुख दूं, यह करूं, मैं भगवान के धाम में जाऊं, जैसे पहले मैं उनकी सेवा में था वैसे मैं जाना चाहता हूं। इस बात को वृत्रासुर जी कह रहे हैं। महाराज परीक्षित का उत्साह कितना बढ़ रहा होगा, वो भी देह त्यागने वाले थे, और वृत्रासुर जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे देह को मारिए, नष्ट कीजिए। महाराज परीक्षित का उत्साह बहुत बढ़ रहा होगा देह त्यागने के लिए और भगवान के पास जाने के लिए। और इसके बाद कह रहे हैं कि आप ये चिंता मत कीजिए कि हमको मारेंगे तो पीड़ा होगी। देवराज इंद्र ने कहा कि यदि मैं आप पर वज्र मारूंगा तो आपको बहुत कष्ट होगा, आप छटपटा जाएंगे, बहुत पीड़ा होगी। तो कहते नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा का अनुभव मन करता है ना, मैं तो मन को भगवान शंकरषण के चरण कमल में लगा दूंगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपका वज्र कब मेरे देह पर लगा। आप चिंता मत कीजिए। अहम समाधाय मनोजथा शंकरषणस्त चरणारविंदे तद्वज्ररंगो लुलित ग्राम्य पाशो गतिम नैर्जामपविद्धलोकः। हननेन मम पीड़ा स्यात् इति अपि मा संशयिष्ठा अहम इति। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि आप ये शंका मत कीजिए कि आप मारेंगे तो हमको बहुत दुख होगा। नहीं, हमारे पति अर्थात हमारा पालन करने वाले पति की पति जो पालन करता है उसको पति कहते हैं। वृत्रासुर जी कहते हैं कि हमारे जो पति हैं, हमारे स्वामी शंकरसन देव, उन्होंने जिस विधि से हमको कहा है कि ऐसे मुझ में मन लगाना चाहिए, जथा आह, जथा संकर्षण आह, जथा भगवान संकर्षण ने कहा है कि ऐसे भजन करना चाहिए, ऐसे मन लगाना चाहिए, ये 16वें अध्याय में वर्णन है, इसी स्कंध है कि आगे वर्णन है क्या भगवान संकर्षण देव ने इनको उपदेश किया। तो जैसा भगवान संकर्षण देव ने अपने श्रीमुख से, मुखारविंद से उपदेश किया है, उनके उपदेश के अनुसार तो चरणारविंद मन समाधाय, मैं उनके चरण कमल में, उनके सुंदर विग्रह में, उनकी लीलाओं में अपने मन को बिल्कुल रख दूंगा। सम आधाय, आधाय का अर्थ रख कर, और सम का अर्थ सम, मैं अपने मन को भगवान के चरण कमल में बिल्कुल रख दूंगा, और आपका वेग से जो वज्र चलेगा तो मेरे विषय भोग के साधन रूप इस शरीर को नष्ट कर देगा, छिन्न भिन्न कर देगा, और मैं शरीर छोड़कर अपविध लोक, लोकाकार से देह, इस देह को छोड़कर के मुने गति में जाऊंगा, मैं मुनियों की गति प्राप्त करूंगा, मुनि लोग जहां जाते हैं वहां जाऊंगा, अर्थात भक्त जहां जाते हैं भगवान शंकरसन देव की चरण सेवा में मैं पुनः चला जाऊंगा, यह कह रहे हैं। आपका वज्र मेरे मन को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, मेरा मन तो भगवान में लगा रहेगा, आप चिंता मत कीजिए कि मुझे पीड़ा होगी, दुख होगा। अथवा मान लीजिए इंद्र देवता यह कहें कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि आप गदा की तरह वज्र चलवा करके और उस वज्र को मुझ पर मार करके आप स्वर्ग का राजा बनना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो आपका प्लान नहीं है। तब वृत्रासुर जी कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तो भगवान शंकरसन देव की शिक्षा के अनुसार उनके चरण कमलों का चिंतन करूंगा, और यह देह छोड़ करके मैं भगवान की सेवा में जाना चाहता हूं, मैं मुनियों की गति प्राप्त करना चाहता हूं। मुनि लोग कभी स्वर्ग के भोगों में आसक्त नहीं होते, मुनि वास्तव में भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, भगवान के पार्षद बनना चाहते हैं, तो मैं तो भगवान का पार्षद बनना चाहता हूं, मैं स्वर्ग विजय नहीं करना चाहता हूं, आप चिंता मत कीजिए। इसका एक अर्थ है आप चलाइए वज्र। इसके बाद मानव इंद्र भगवान कहे कि आप भगवान शंकरसन के अनन्य भक्त हैं, तो भगवान ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मुझे हरा करके और आपको स्वर्ग दे सकते हैं, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं तो आपको भी स्वर्ग दे सकते हैं भगवान। तो कहते नहीं, वो नहीं देंगे, मैं उनका स्वभाव जानता हूं, अपने अनन्य भक्तों को भगवान कभी संपत्ति नहीं देते हैं, मैं जानता हूं। अगर देते हैं किसी को तो समझना चाहिए कि भगवान की उस पर इतनी कृपा नहीं है। इसमें बता रहे हैं, पुंसाम किलैकांत धियाम स्वकानाम यह संपदो दीर्घुर मौरसायाम न राति जद्वे सौद्वेगयाधि मदह कलिर्व्यसनम संप्रयास। तो कहते आप शंका मत कीजिए कि भगवान मुझको स्वर्ग देंगे, नहीं। तो या दिवी भूमौ रसायम संपद, चाहे स्वर्ग में ऊपर के लोकों में या पृथ्वी पर या रसातल में पताल आदि में जो संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों को भगवान एकांत धियम स्वकानम न राती, अनन्य भक्ति करने वाले अपने शुद्ध भक्तों को भगवान ये सब नहीं देते हैं। मैं जानता हूं अपने स्वामी का स्वभाव, ये नहीं देते हैं, बल्कि जो रहता है उसको भी धीरे धीरे हर लेते हैं। जस्याहम अनुग्रहामी हर्ष्य तब धर्म समय, भगवान ने कहा भी है कि मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं, जिसको अपना बनाना चाहता हूं, उसका धर्म धीरे धीरे छीन लेता हूं। ये चिंता मत कीजिए, भगवान खाने पीने भर छोड़ करके फालतू जो दोष में फंसाने वाला होता है उसको छीन लेते हैं, तो नहीं देते हैं। जो छीन लेता है देगा क्या बताइए, जो वो तो देते नहीं, न राती न ददाती, नहीं देते हैं। इस पृथ्वी की संपत्ति भी नहीं देते हैं, स्वर्ग की संपत्ति नहीं देते हैं, पाताल की संपत्ति भी नहीं देते हैं। किसको? स्वकान, अपने जनों को नहीं देते, खास करके एकांत धियां, जिनकी बुद्धि अनन्य है, भगवान में ही रची पची है, उनको ये सब नहीं देते हैं। किलो का अर्थ निश्चितम, निश्चितम न रहती न ददाती, निश्चित नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? इसे कई कारण बता रहे हैं। क्योंकि जब जासु संपदासु, जिन संपत्तियों में द्वेष होता है, उद्वेग होता है, आधि मद कली व्यसनम संकर, द्वेष, जिसके पास बहुत ज्यादा धन होता है वह द्वेष करता है दूसरों से, उसको इतना नहीं होना चाहिए, वो शत्रुता बढ़ा लेता है, उद्वेग और उसके इंद्रियों में भोग की वासनाएं बढ़ती हैं, या उसे भय आ जाता है, आधि उसके मन में चिंताएं होती हैं। आधिक अर्थ मन में चिंता, कैसे धन बचेगा, क्या होगा, आगे कौन खाएगा, इतना इनकम टैक्स बढ़ता जा रहा है, ये होगा, ये व्यर्थ चिंता। और जिसके पास धन इनकम टैक्स बिल्कुल कम है उसको तो ये चिंता नहीं है, है ना, उसको चिंता नहीं है कि हमारे इनकम टैक्स में चला जाएगा, उधर ये हो जाएगा, उधर वो हो जाएगा, बहुत चिंता होती है, कहीं लड़का इस धन को ज्यादा न उड़ा दे इधर उधर, अपने स्वजनों से, सरकार से, चोरों से, माफिया से, किससे किससे भय होता है, इसको चिंता कहते हैं। धन नहीं रहने पर चिंता नहीं होती, नहीं रहने पर तो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे बहुत चिंता रहती है। और मद, और घमंड हो जाता है कि मुझको इतना है, ये है, वो है, जिसमें मद है वो क्या भगवान का भजन करेगा, वो अपने को धन में समझ रहा है, धन आदि के कारण। और कली, कलह होता है, धन के लिए झगड़ा होता है, तो झगड़ा का सामना करना पड़ता है, जब देखिए तब कोर्ट में ही व्यक्ति को जाना पड़ता है, उससे झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, ये हो रहा है, और व्यसन, फिर मदिरापान, परिस्त्री गमन आदि, ये सब व्यसन कारण। और सम प्रयास, बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जितना धन होता है उतना ही ज्यादा मेहनत करते हैं लोग, देखा गया है, उनको भोजन करने की फुर्सत नहीं रहती, चाय रखे रखे ठंडा हो जाता है, फिर बाद में दूसरा नौकर खड़ा रहता है, मालिक को हिसाब किताब करते करते ही फुर्सत नहीं रहती, दूसरी बार तीसरी बार वो ये भी नहीं कहने का साहस करता है कि मालिक पी लीजिए, क्यों, देखता है मालिक की जब दृष्टि पड़ेगी तब पड़ेगी, ये आंख से देखा है हमने कि कितनी बार चाय ठंडा हुआ, गुरु आदमी संप्रयास में है, मेहनत कर रहा है, ये सब दोष भरे पड़े हैं संपत्तियों में, इसीलिए भगवान अपने भक्तों को नहीं देते हैं, वो मुझको नहीं देंगे, आप विश्वास कीजिए, मुझको देने वाले नहीं है। तरही किम विधत्ते, तो मान लीजिए अगर भगवान इंद्र पूछे कि भगवान अपने अनन्य भक्तों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, क्या देते हैं, देते क्या है, तरवर त्रय वर्ग कायास विघातम अस्मत पतिर विधत्ते पुरुष सक्र तत्व भगवत प्रसाद हो ये दुर्लभ किंचन गोचर हो। ये ऐसा करते हैं कि भक्त हो करके अगर कोई त्रैवर्गिक आयास करे, त्रिवर्ग, त्रिवर्ग का अर्थ है धर्म अर्थ काम, इसको त्रिवर्ग कहते हैं, और स्वर्ग पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, और इंद्रिय भोगों के लिए जो भक्त प्रयास करता है इसको त्रैवर्गिक आयास कहते हैं। तो भगवान तो भोगों को देते नहीं, अगर कोई इन भोगों के लिए, अर्थ धर्म काम के लिए आयास करे तो उस पर विघातम विधत्ते, उस पर और विघात कर देते, सफल नहीं होने, यही करते हैं। यदि मैं चाहूंगा कि स्वर्ग जीतूं तो मुझको भगवान जीतने नहीं देंगे, देखिए उनकी व्यवस्था, अब मेरा शरीर भी जाने वाला है, मैं स्वर्ग क्या भोगूंगा, यही भगवान की कृपा है, तत्व में ये भगवत प्रसाद है। जब किसी भक्त का व्यापार सफल न हो, ऐश्वर्य आदि न प्राप्त हो, तो समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा इस व्यक्ति पर हो रही है। तत्व में ये भगवत प्रसाद, भगवत प्रसाद तब अनुमेय है, यदि सफलता मिले, बहुत बहुत संपत्ति, बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट पद आने लगे, तो समझना चाहिए कि भगवान की सम्यक कृपा नहीं है, पूरी पूरी कृपा उस पर नहीं है। कहने का भाव भाव है कि आप पर भगवान की पूरी कृपा नहीं है इसलिए आप स्वर्ग लेंगे, ये मैं जानता हूं, परंतु मुझ पर पूरी कृपा है, मैं तो जाऊंगा बैकुंठ, मुझे यहाँ के भोगों से कोई तात्पर्य नहीं है, भगवान मुझे नहीं देंगे, मैं अपने स्वामी का स्वभाव पूरा जानता हूं, ततुल में ये भगवत प्रसाद है और भगवान का यह प्रसाद दुर्लभ है अन्य लोगों के द्वारा। दूसरे लोग तो कांप जाएंगे कि अरे बाप रे बाप, कृष्ण ऐसी कृपा करते हैं, वो लोग नहीं समझ सकते। लेकिन अकिंचन गोचर जो अकिंचन है, कृष्ण के अतिरिक्त जिनकी कहीं ममता नहीं है, वे लोग समझ जाते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अपना बनाना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, इसीलिए हमको स्वर्ग नहीं लेने देंगे, आपको ही स्वर्ग का राजा बनाएंगे, क्योंकि आप पर अभी उनकी पूरी कृपा नहीं हुई, आप बाद में रियलाइज करेंगे। आप समझते हैं कि विष्णु आपके पक्ष में है, लेकिन खुलम खुलम मेरे पक्ष में है। एक को स्वर्ग देना इस प्राकृत जगत में बांध करके रखना और दूसरे को अपनी सेवा में बुला लेना, क्या आप नहीं जानते कि किस पर कृपा है? एक को डायरेक्ट पार्षद बनाकर अपने चरणों में लेना और एक को छोड़ देना स्वर्ग का राजा बनो, वो कृपा तो जरूर आप पर भी है, लेकिन हमारे सामने जो कृपा है भगवान की, वो आप पर कुछ भी नहीं है। हमारे पर और आप पर जो कृपा है उसकी कोई तुलना नहीं है। मुझ पर बहुत स्नेह है भगवान का, इसीलिए भगवान संकर्षण मुझको ये सब संपत्ति नहीं देंगे, अतः मैं भी निश्चिंत हूं कि वे देंगे भी नहीं और मैं लेना चाहता भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं देह त्यागना, इसलिए आप मेरा वध कीजिए, चलाइए चलाइए। बार बार निहोरा कर रहे थे, लेकिन अब काहे को भगवान इंद्र चलाने जाए बच, पहले युद्ध के पहले मारने की इच्छा भी थी या युद्ध के शुरू में, लेकिन अब तो कतई उनका मन नहीं था कि मैं फिर वध करूंगा। तो जब इंद्र ऐसे किंग कर्तव्य विमुग्ध थे, चुपचाप थे, तो उस समय वृत्रासुर जी डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना करने लगे। वो चार श्लोक कल कहे जाएंगे जिन्होंने डायरेक्ट भगवान से कहा। हरे कृष्ण।